نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. دیکھتے ہیں سورہ نور 18 پارہ آیت 31 سے 34 تک تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی کوسچن پچھلے سبق سے پہلے ذرا دیکھ لیں پھر تاکہ اس کو یہ پچھلی باتیں آپ کو ساری کلیئر ہو جائیں. ایک تو ہم نے واقعہ عفق پڑھا تھا, اس سے ایک سوال ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہی تھی سارا ٹائم رو رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بے چین ہیں, رو رہی ہیں. تو یہ ان کا رونا کیا یہ صبر کے منافی ہے؟ نہیں, یہ صبر کے منافی نہیں ہے, صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اور کنٹرول نیگیٹو باتوں سے. رونا ایک ایسی چیز نہیں ہے جو روکا گیا ہو کہ آپ رو نہیں سکتے. بعض لوگ جب کوئی ایسا کسی کے اوپر صدمہ آتا ہے اور وہ رو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو, حالانکہ اگر وہ خاموشی سے رو رہا ہے تو یہ ایک نیچرل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روبوٹس نہیں بنایا ہوا. ہمارے جذبات بھی ہیں, احساسات بھی ہیں, ہمارے خوشی غم بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے یعقوب علیہ السلام کی انہوں نے مثال دی تھی, اور یعقوب علیہ السلام بھی سارا ٹائم روتے رہے تھے, بلکہ اندھے ہو گئے تھے رو رو کے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا اگر کسی کو پر کوئی صدمہ آئے, کوئی پریشانی آئے اور وہ رو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور یہ صبر کے خلاف نہیں ہے کہ اس کا صبر ضائع ہو گیا. دوسری یہ کہ عبداللہ بن ابئی پہ حد قائم کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے کبھی بھی کوئی ثبوت نہیں ملا اس بات کا کہ اسی نے یہ بات کہی تھی اور اس نے اسٹارٹ کی تھی, اور اس نے وہ ایسے ہی جا جا کے باتیں کرتا رہتا تھا. تو آپ کو پتا ہے دنیا میں جنہوں نے مان لیا اور جن پہ حد نافذ ہو گئی تو وہ تو کفارہ بن جاتا ہے ان کی آخرت کی سزا کو, ان کو وہاں پہ نہیں سزا ملے گی. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا جو ہے نا آخرت کے لیے اٹھا رکھی ہے. الحمدللہ پچھلے لیسن سے کافی ہمیں پازیٹیو رسپانس ملا ہے الحمدللہ, لیکن ایک بات اور بھی آئی ہے کہ میں مردوں کی سائیڈ لیتی ہوں. تو اس کے اندر میرا جواب یہ ہے کہ عورتوں کے بے شک ان کے بھی حقوق ہیں, اور جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں, لیکن اس کلاس میں اگر مرد اسٹوڈنٹس ہوتے تو ان کو وہ باتیں بتائی جاتی. مگر ہاں ہیں تو صحیح, مگر اکا دکا کوئی مرد سنتے ہیں. 99% تو یہاں پہ عورتیں ہی بیٹھی ہوئی ہیں, تو میں انہی کو بتاؤں گی. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے بستے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر جو ہے وہ فرشتوں کو بنا کے بھیجتا, مگر یہاں پہ انسان ہی رہتے ہیں تو انسان کو ہی پیغمبر بنایا جائے گا. تو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ عورتیں ہیں کلاس میں تو عورتوں کو ہی بتایا جائے گا نا, آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, تھوڑی یہ بتایا جائے گا مرد یہ کریں. مرد تو ہے نہیں یہاں پہ کوئی. اب دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو مردوں کے ذمے فرائض ہیں وہ میں بہت اچھی طرح بتا سکتی ہوں. جو بھی ان پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, جو بھی ان کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے ہیں, بہت اچھی طرح بتا سکتی ہوں کہ وہ عورتوں سے بھی زیادہ کئی تاکیدیں ہیں ان کے لیے قرآن میں بھی حدیث میں بھی. مگر نہ تو میں نے ان کو کبھی ان باتوں کو اپنے گھر میں بڑھ چڑھ کے سنایا, اور نہ میں آپ کو سکھاؤں گی. وجہ پتہ ہے کیا؟ کہ آپ جب وہ سن کے گھروں میں جا کے سنائیں گی تو حقوق تو پھر بھی نہیں ملیں گے, الٹا لڑائی ہوگی, گھر بے سکون ہوں گے. جبکہ جو نسخے میں نے آپ کو بتایا نا, اگر وہ آپ نے کر لیے تو جیسے کسی اسکالر نے کہا تھا کہ شوہر کو قابو کرنے کا طریقہ ہے, تو شوہر کو اگر مٹھی میں رکھنا ہے تو اس کی نظروں میں خود کو اٹریکٹیو بنانا ہوگا, نہ کہ اس فکر میں رہیں کہ मैं बाहर के लोगों में अट्रैक्टिव हो जाऊं। तो एक तो ये करना होगा, और ये इस चीज के साथ करना है कि जुबान भी मीठी रहे। अगर बाहर से बन संवर गए लेकिन जुबान कड़वी है ना, तो सब वो बनना संवरना भी गारत हो जाएगा। ये नहीं आपसे कहा गया कि कोई मॉडल बन के बैठ जाए, बल्कि सिर्फ ये है कि शौहर के आने से पहले, कुछ देर पहले, आप, मेरा नहीं ख्याल कोई 10-15 मिनट से ज्यादा कोई इतनी तैयारी आपने करनी होगी, तो बस कुछ देर पहले उठ के चेंज कर लें, हल्का फुल्का मेकअप कर लें, कंघी कर लें, खुशबू लगा लें। और बस खुशबू कैसी नहीं लगानी, वो हम आगे आज इंशाल्लाह देखेंगे। इसी तरह आप बच्चों को साफ सुथरा कर दें, उनको भी अच्छा लोशन लगा के ठीक ठाक कर दें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि शौहर घर में दाखिल हो और घर में लड़ाई मार कुटाई चल रही है, बच्चे लड़ रहे हैं, घर उल्टा पड़ा हुआ है, चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, औरत भी बेहाल हुई पड़ी है, आज मुझे इसने तंग किया और उसने किया, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर घर की चीज़ें समेट दें। अगर बच्चों ने सुबह से गंद भी मचाया हुआ है, तो जैसे आप किसी मेहमान के लिए करते हैं ना एक एहतमाम, इसी तरह से थोड़ा सा एहतमाम कर लें। बहुत ज़्यादा कोई करने को नहीं कह रहा, मगर थोड़ा बहुत कुछ एहतमाम ज़रूर करें। और कभी ऐसा ना हो कि जिस बिस्तर से सुबह को उठ के गए थे, रात को जब आए तो वो वैसे का वैसा ही पड़ा। बिस्तर ज़रूर झाड़ के क्लीन करें, अच्छा बेड कवर बिछाएं, अच्छी तरह आपका कमरा होना चाहिए। अब उनका सवाल है, वो औरतें जो जॉब करती हैं वो क्या करें? याद रखें, जॉब की अल्लाह की तरफ से कोई पूछ नहीं है आपको कि जॉब की थी या नहीं, मगर शौहर के हकूक की पूछ जरूर होगी कि वो अदा किए थे या नहीं। ठीक है, तो चाहे जॉब करती हूँ, हमारे पास और बहुत काम है, ये है वो है, जितना भी हो, मगर ये हकूक पूछे जाएंगे। इसी तरह जिनके शौहर घर से काम करते हो, उनके लिए भी है कि सुबह, लेकिन वो सारा दिन घर पे रहते हैं, तो अब हम क्या करें? अब आप तो अपना काम वाम समेट कर, फिर उसके बाद अपने आप को साफ सुथरा करके, अपने आप को तैयार करके फिर बैठ जाए। चाहे वो सारा दिन भी घर होते हैं, मगर जब आप काम से, अपने किचन से, इन चीजों से फारिग हो जाए, तो अपने आप को ठीक ठाक कर लें। इसी तरह कोई भी इस बात से खुश ना हो कि अगर बीवियों को उनके फराइज याद दिलाए जा रहे हों किसी लेक्चर में, तो अब कोई शौहर सुन रहा है तो वो खुश हो रहा है कि अच्छा है आज इसकी क्लास हो रही है, अच्छी ठीक है, या शौहर के फराइज बताए जा रहे हों, तो तब आपके दिल को ठंडक पहुंचे कि आज आने दो जरा, मैं अच्छी तरह इनको बताऊंगी ये बातें। ना कोई सास खुश हो कि आज तो बहू के कान खोल के सुनने वाली बातें हैं, और ना ही कोई बहू खुश हो कि आज मेरी सास सुन ले कि ये देखे क्या कहा जा रहा है, इन्हीं के ऊपर है ये सारा फिट होता। देखें, याद रखें, जो भी खुद को संवार लेगा ना ये बातें सुन के, वो ही अच्छा रह जाएगा। कल को आप क्या चाहते हैं? क्यामत के दिन आप उस लाइन में खड़े होना चाहते हो जिसने किसी से अपना हक लेना है, या उस जगह पे खड़े होना चाहते हैं कि जो इतनी नेकियां लेकर भी आया, मगर उसका हक देना है, उसका हक देना है, उसका हक देना, किस जगह पे होना चाहते हैं? जो आज हकूक अदा करके फारिग हो गया इस दुनिया में, आज उसने हकूक सारे अदा कर लिए हैं, बहुत से लोगों के इसके जिम्मे थे और इसने अदा कर दिए, और जो ये अदा करके चला गया, फिर वहां जाके किसी को उसके ऊपर दावा करने का मौका नहीं मिलेगा, इसकी नेकियां वहां सेव हो जाएंगी। और जो चाहता है कि फलां भी मेरा हक दे दे, फलां भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, शोहर भी दे दे, ये भी दे दे, और खुद हक अदा करने की कोई फिक्र नहीं है, फिर वो यहां तो बेफिक्री से रह सकता है, कल वहां क्या करेगा जब ये सारे डिमांड करने को जमा हो जाएंगे? हक तो नहीं खत्म हो जाएंगे, तब देने को सिवाय नेकियों के कुछ नहीं रहेगा। अब हम सबको इस स्टेज पे होना चाहिए कि बजाय हम इस चीज की पर बड़ी खुशी करें कि फलाने की आज क्लास लग हो रही है, आज फलाने को कहा जा रहा है, आज फलां को कहा जा रहा है, आज इसके हकूक करे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, और उसके उसकी से ज्यादा इस चीज की हमें फिक्र होनी चाहिए कि प्लीज मुझे बताएं किस किस के क्या क्या हकूक मेरे जिम्मे हैं ताकि मैं अदा कर दूं। यहां पे अगर कोई शौहर खामोशी से बैठा रहता और कुछ नहीं कहता आपको, और वो बेचारा मजबूर है किसी भी वजह से, बच्चों की वजह से मजबूर है, या वैसे ही डरता है कि क्या इसको छेड़ूं, अगर छेड़ दिया तो इसकी जुबान खुल जाएगी, आफियत इसी में कि खामोश रहूं और जो भी शिकायतें हैं या जो आपके रवैये हैं उनको पी जाता है, तो आपको कोई मेरे सामने जवाब नहीं देना ना किसी और के सामने। अल्लाह देख रहा है, और ये शौहर आज चुप है ना, वहां पे जाके ये बोलेगा और वहां पे हकूक मांगेगा जिस वक्त इंसान सबसे ज्यादा मोहताज होगा। तो किसी की खामोशी को अपने लिए बड़ी मजे की बात ना समझा करें, इसने क्या बोलना है, बोल के तो दिखाए, तो नहीं बोल रहा आज, नहीं बोल रहा, लेकिन ये तो और भी खतरनाक बात है, क्योंकि जिस दिन वो बोलेगा फिर उस दिन बड़ा मसला होगा। ठीक है, देखिए तकवा है क्या। हम कुरान करीम शुरू करते हैं तकवा की बात से ही शुरू होता है, हुदल लिल मुत्तकीन है ये। मुझे बताएं अगर हमें हमारे अंदर तकवा ही नहीं आया, छोड़े सब, कौन देख रहा है मुझे कौन नहीं देख रहा, किसको क्या पता है मेरे घर में मैं क्या रवैये रखती हूँ क्या करती हूँ, छोड़ दें सब लोगों को, मगर एक जात की नजरों का एहसास तो करें कि अल्लाह तो देख रहा है ना, मैं जो ज्यादतियां करूंगी कोई कुछ भी ना कहे मुझे, सारे मेरी तारीफें ही करते हैं कि मैं बड़ी अच्छी हूं, मैंने अपना ऐसा इमेज बना रखा है, ये तो सोचें कि एक रब तो देखने वाला है, उसकी नजरों का एहसास नहीं होता क्या? अपने हकूक जो दूसरों के हमारे जिम्मे हैं उनको अदा करने की फिक्र नहीं होती? अल्लाहु अकबर। फिर ये भी एक आया है कि क्या ये दुरुस्त है कि शौहर बीवी को गंदी फिल्में दिखाए ताकि वो बेहतर, मतलब चाहे, मतलब अगर शौहर अपनी बीवी को बुरी फिल्में दिखाता है वो शौहर डबल गुनाहगार होता है। बीवी तो हो रही है क्योंकि अल्लाह ने उसको भी अकल समझ और सब दी है कि वो इनकार करे, और किसी की फरमा बरदारी नहीं है अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह की नाफरमानी जहां हो रही वहां पे किसी की भी आपको सुनने की जरूरत नहीं है। तो शौहर अगर बीवी को ऐसे बात का हुक्म दे रहा है तो वो अपना भी गुनाह कमा रहा है, बीवी का भी गुनाह कमा रहा है, और ये नजरों की हिफाजत के खिलाफ है। इसी तरह किसी ने ये भी पूछा है कि क्या मर्दों को नहीं चाहिए कि वो अपनी बीवी के लिए अच्छी तरह अट्रैक्टिव लगे? देखिए उनका तो कोई बनाव सिंगार है नहीं, ज्यादा सादा यही है कि वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, साफ सुथरे रहें, उनको भी रहना चाहिए। देखें सफाई तो निस्फ ईमान है, अब इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि चाहे औरत के लिए नहीं भी वैसे ही साफ रहना चाहिए। इसी तरह एक और सवाल है कि क्या किसी के घर जाएं और उनका बाथरूम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी उस बाथरूम के अंदर, अब आपने तो बाथरूम लॉक कर लिया, अब अंदर उनके ड्रॉर्स भी हैं, क्लोजेट भी है, उसको खोल खोल के उनकी चीजों को चेक करना, देखना क्या यूज करते हैं, क्या रखकर क्या रखा हुआ है क्या नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं। देखें अगर किसी के घर में दाखिल होना दुरुस्त नहीं है बगैर इजाजत के, तो ये कहां से दुरुस्त हो जाता है कि उसकी वो चीजें जो उसने बंद करके रखी हुई है उनको आप खोल खोल के देखें? इसी तरह जब कोई आपके घर पे बेल करता है, आप दरवाजा खोलते हैं, तो उसको पहले, अगर वो उसने पहले से इजाजत नहीं ली हुई, आपसे टाइम नहीं लिया, अगर तो इजाजत ली हुई तो जाहिर ही बात है फिर तो वो अंदर आएगा, लेकिन अगर नहीं इजाजत ली हुई तो अब उसको इजाजत लेनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आपने दरवाजा खोला तो आपका दरवाजा खोलने का मतलब ये हो गया कि अब वो अंदर आए और अंदर चलते चले जाएं और जाके अंदर आपके कमरे तक घुस जाएं या किचन तक जाके खड़े हो जाएं और आप अभी दरवाजा ही खोल के खड़े हुए हैं कि ये हो क्या गया। ये नहीं कि कोई वो बुरे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं हमारे, बहुत प्यारे लोग होते हैं, लेकिन ये अहकामात ऐसे हैं जिनसे ला इल्मी की वजह से आज तक ये गलतियां करते जा रहे हैं। तो इनको बहुत जरूरी है कि हम बार बार रिपीट भी करते रहे, मैंने जैसे पहले भी कहा, आप लोग जरूर कोशिश करें अपने घरों में भी इस सूरत को दोहराएं। इसी तरह आपके पास कोई मस्जिद है, कोई मुसल्ला है, कोई जगह है, वहां पे औरतों को इकट्ठे करके इस सूरत को उनके साथ दोहराएं। इसी तरह अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में या अपने घर में एक दिन एक गैदरिंग रख लें। जब हम और चीज़ों की दावतें रखते हैं तो एक दावत रखें, उनको खाने पर बुलाएं और कहें कि हम सूरह नूर करेंगे और मुख्तसरन इस सूरत को अपनी फ्रेंड्स तक पहुंचाएं, ठीक है, क्योंकि सब औरतों को इसकी तालीम लेनी चाहिए। चलें जी, अब आज की जो आयात है, सबसे पहले तो ये दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हमारे हक में हुज्जत बनाना, हमारे खिलाफ हुज्जत ना बने। अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल करना हम सब खवातीन के लिए आसान बना दे, क्योंकि ये हुक्म औरतों के लिए, और ये वो हुक्म हम पढ़ने जा रहे हैं जो इतना बड़ा टेस्ट है औरतों के लिए, इतना बड़ा टेस्ट है। मर्दों के तो टेस्ट डिफरेंट है ना, उनके तो भाई हलाल खाओ, ये सूद है, रिश्वत है, ये है वो है, इन चीजों से बचें, ये सब चीजें मर्द जाहिर है वो कमाइयां करते हैं, उनको ये अहकामात दिए गए। लेकिन औरतों के लिए जो इम्तिहान वाली आयत है वो ये आयत 31 है, ये हम सब का इम्तिहान है। इस आयत को पढ़ने के बाद सब मामला हमारे सामने खुल जाएगा, और खुल जाना चाहिए। दोबारा से एक दफा आयत नंबर 1 को दोहरा लेते हैं। सूरतुन अंजलनाहा व फरदनाहा व अंजलना फीहा आयातिम बय्यिनात। इस सूरत में कौन सी आयतें हैं जो खुली खुली हैं, वाजे हैं, बयन, ऐसी चीज को कहते हैं जो बिल्कुल क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर जैसे हम कहते हैं। तो कोई कंफ्यूजन अगर हमारे जहन में है तो वो भी दूर हो जानी चाहिए, कोई डाउट्स हैं वो दूर हो जाने चाहिए। और ये सूरत नाजिल की हमने और फर्ज कर दिया हमने इसको, यानी इसके अहकामात पे अमल करना फर्ज कर दिया। तो ये शुरू में ही आपने पढ़ लिया, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं फर्ज कहाँ किया गया है ये सब। तो फर्ज शुरू में ही बता दिया कि ये सारी सूरत ही फर्ज है, सूरतुन अंजलनाहा व फरदनाहा, ठीक है। और इसमें खुली खुली बातें हैं, यानी अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे तो समझ ही नहीं आई। और वाकई अगर किसी को ना समझ आए, आई वुड अप्रिशिएट कि अगर इन आयतों को पढ़ने के बाद आप जरूर कोई कंफ्यूजन हो मुझसे क्वेश्चन करें, जरूर क्वेश्चन करें, क्योंकि हमसे रिलेटेड है ना ये चीज। तो जब तक हम समझेंगे नहीं तो अमल कैसे करेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह अगर आप लोग इसका फीडबैक भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो समझा या कोई किसी ने अपने अमल में कोई चीज लेकर आया, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी बात है कि ये हम अगर आज पढ़ के उसके बाद अमल के लिए अपने आप को तैयार करें। तो ये जैसे कुरान करीम फुरकान है ना, फर्क कर देता है। बदर का दिन भी यौमुल फुरकान था कि उस दिन के बाद कह दिया गया कि आज के बाद साफ वाजे हो जाएगा कि बदर था ना, तो हक पे कौन है और बातिल पे कौन है, क्योंकि हक की फतह हुई थी। इसी तरह इस आयत को पढ़ने के बाद जो जैसे बदर का कहा गया था कि जो जिएगा वो हक जान के जिएगा और जो बातिल पे रहेगा वो बातिल को जान के बातिल पे चलेगा, इसी तरह इस आयत को पढ़ने के बाद इसके बाद जो भी हम रवैया रखेंगे एटलीस्ट हमें पता होगा कि हम अगर हक पे हैं तो वो हक पे चलने वाले खुद को तसल्ली से रखें और चलते रहें उसके ऊपर कि हम सीधे रास्ते पे हैं, हमें इस रास्ते को छोड़ना नहीं। और जो अभी तक अमल नहीं कर पाए वो भी अगर नहीं अमल करते तो वो ये सोच के इससे पीछे हटें कि हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल, और कह दीजिए, किसको कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कौन कह रहा है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, ए नबी आप कह दें, किसको कह दें, लिल मुमिनात, मोमिन औरतों को। अब मोमिन औरतें जरा अलर्ट हो जाएं कि ये हुक्म किसका आ रहा है, अल्लाह ताला का, और किसके थ्रू दिया जा रहा है, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کا حکم بھی ہو گیا اور نبی کی بات بھی ہو گئی, ٹھیک ہے نا, دونوں کی ہو گئی. ویسے تو سارا قرآن میں ہی جو بھی احکامات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھ کے سنائے, لیکن خاص طور پہ کچھ احکامات کو تاکید کی وجہ سے کہ آپ خود کہیں ان کو, آپ یہ بات بتائیں ان کو. تو اللہ کا بھی حکم ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہو گیا ساری مومنہ عورتوں کے لیے. تو اب چونکہ ہم سب خواتین ہیں تو ہمارے لیے یہ حکم پھر ذہن کو الرٹ رکھ کے سننے والا ہے. کیا کریں؟ نمبر ون, یغددن من ابصارہن, جھکا کے رکھیں اپنی نگاہوں کو. اور تو اپنی نگاہوں کو آزاد نہیں چھوڑنا, اپنی نگاہوں کو کہیں بھی ادھر ادھر دیکھنے کے لیے, یعنی جو جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان پہ ڈالنے سے روکنا ہے. نیچی رکھنے کا جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی, نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں چیزوں سے ٹکرا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو کہا گیا قرآن میں کہ نظریں نیچی رکھو. نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کسی ایسی جگہ پہ نظر نہیں ڈالنی جہاں پہ نظر ڈالنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے, بات ختم ہو گئی. اب دیکھیں بعض دفعہ انسان کی نہ چاہتے ہوئے بھی کانشیسلی نہیں وہ کرتا, لیکن ایک دم کوئی سین سامنے آ جاتا ہے, ایک دم کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے, ایک دم کسی کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے, تو کیا کرے پھر؟ اس کا مطلب ہے فوراً وہاں سے نظر ہٹا لے, نظر پیچھے کر لے. جہاں پہ نظر ڈالنے سے روکا گیا ہے یا جہاں پہ اٹریکشن محسوس ہوتی ہے وہاں سے نظر پیچھے کر لے, ٹھیک ہے. اور پھر ایسی جگہ پہ نظر نہ ڈالے جہاں پہ کہا گیا کہ یہ, یعنی جن کے جن بھی پہلے بھی بات ہوئی تھی جب مردوں کی بات ہوئی تھی کہ جن بھی جگہوں کے اوپر یعنی جو حرام ایسے کوئی تصویریں ہیں, سین ہیں, فلمیں ہیں, چاہے ڈرامے ہیں, چاہے جو بھی مرضی ہے, چاہے انٹرنیٹ ہے, چاہے کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. تو عورت کے غد بصر میں کیا آتا ہے؟ ایک تو ارادتاً نہ دیکھے, چلو دیکھتے ہیں ذرا, جیسے جب ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں تو پھر ان کو ہوتا ہے لڑکے آ رہے ہیں ذرا دیکھتے ہیں. لڑکوں کو بھی ایسا ہوتا ہے, لڑکیوں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, فلاں ہینڈسم ہے چلو دیکھو اس کو. تو ارادے سے تو بالکل نہیں دیکھنا, نمبر ون. نمبر ٹو, نظر پڑ جائے تو کیا کرنا ہے؟ ہٹا لینا. نمبر تھری, کسی کے ستر کی طرف نہیں دیکھنا, کسی کے ستر کی طرف نہیں دیکھنا, اس کو چاہے پتا ہے یا نہیں پتا, مگر جو اس کے ستر کے حصے ہیں نا, مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک اور گھٹنا انکلوڈیڈ ہے, ان جگہوں کی طرف نہیں دیکھنا. انلیس ہے یہ کہ دیکھیں کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی اس طرح سے مطلب ایسی کوئی بات ہے, کوئی میڈیکل ریزن ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, وہ تو الگ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں عام حالات کی بات کر رہی ہوں. نمبر فور, مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں دیکھنا ایک دوسرے کو, سمجھ آئے؟ آمنے سامنے یعنی ایسے جیسے کہ ٹیبل پہ سامنے سامنے بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کے اوپر سامنے نظر پڑ رہی ہے. اب ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, بعض فنکشنز جب ہوتے ہیں لوگ کارڈ رکھ دیتے ہیں, یہاں پہ اس ٹیبل پہ فلانے نمبر ٹیبل پہ فلاں فلاں فیملیز بیٹھیں گی. اب آپ جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو سامنے ہی بالکل آپ کے منہ کے آگے آدمی بیٹھا, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کرنا. اسی طرح راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی کھیل, جائز کھیل دیکھتے ہوئے مردوں پہ نظر پڑ جائے تو گناہ نہیں ہے. اور نمبر سکس یہ کہ ضرورت کے تحت اگر گھر میں رہتے ہوئے کوئی آتا جاتا ہے اس طرح, اس میں دیکھنے میں حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں عورت کے حوالے سے نا کچھ لینینس ہے, مرد کو تو بالکل لینینس نہیں ہے, عورت کو کچھ لینینس ہے اس میں, کچھ اس کے ساتھ نرمی ہے. اس لیے آپ, وجہ کیا ہے, آپ ایک بات نوٹ کیجئے کہ مرد کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا, عورت کو دیا گیا. وجہ اس لیے کہ عورتیں مردوں کی طرف اتنی اس طرح سے اٹریکٹ نہیں ہوتی جیسے مرد عورتوں کی طرف ہوتے ہیں, اس لیے عورت کو کور کر دیا گیا. عورتیں مردوں کی طرف اس طرح سے نہیں ہوں گے, مردوں کو نہیں کہا گیا تم اپنے آپ کو کور کر لو, یہ نہ ہو کہ یہ تمہیں دیکھیں, یہ نہ ہو کہ ان کی نظر پڑ جائے, ٹھیک ہے. اور پھر مرد بھی अगर उसको हुक्म है कि अपनी नजरों को झुका के रखे, अपनी नजरों को पस्त रखे, तो अगर सोचे कि औरत को पर्दे का ना हुक्म हो तो फिर तो बड़ा उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी नजरों की हिफाजत कर सके। तो यहां पे हमें पता चलता है कि पहला हुक्म नजरों को बचाने का है। अब इसमें एक बात यहां पे नोट कर लें, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि 7 हिजरी में हबशियों का वफद मदीना आया था, मस्जिद नबी में उन्होंने एक तमाशा किया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इन्होंने खड़ी होके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद देख बुलाया था कि भई आप देख लें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़ी होके आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने वो तमाशा देखा और देखती नहीं और फरमाया जब तक कि मैं खुद ही, मतलब मेरा जी नहीं भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दी थी, तो इसका मतलब है कि इतनी हद तक देख सकते जैसे अब आप टीवी पे कोई चीज देख रहे हैं, ऐसी देख रहे हैं, मगर हाँ वहां पे नजर डालना सही नहीं है कि जैसे आप कोई फिल्मी हीरो है, बहुत अच्छा, बहुत ये ऐसा है, ये ऐसा है, और उसकी तरफ आपको अट्रैक्शन महसूस हो रही है या वो अच्छा लग रहा है, दिल को भा रहा है, कोई फिल्मी है, मॉडल है, जो भी है, मगर अब ये किसको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि अट्रैक्शन फील हो रही है या नहीं, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये हर एक का अपना दिल उसको बताएगा। तो जहां पे ऐसी फीलिंग आने लगे वहां से नजर हटा लेनी, यानी कि फिर अच्छा अच्छा लग रहा है तो और देखेंगे, नहीं वो नहीं, ठीक है। एक रिवायत बयान की जाती है कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम जो थे वो जब एक दफा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया अपनी अजवाज को कि तुम पर्दा कर दो कर लो, तो वो बोली कि हम क्यों पर्दा करें, ये तो अंधे हैं, तो फरमाया तुम तो अंधी नहीं हो। ये याद रखें, ये रिवायत ज़ईफ़ है, ठीक है, ये रिवायत ज़ईफ़ है, ऐसा नहीं है। ख़वातीन जो हैं, औरतें जो हैं, मगर फिर भी आज़ाद नहीं है कि जहां मर्जी वो नजरें घुमाएं, टो लगाएं, घरों में झांकें, दूसरों के मामला जानने की कोशिश करें, कौन आया, कौन जा रहा है, कौन बात कर रहा है, किधर जा रहे हैं ये तैयार होके। हमसायों में खास तौर पे ये बात काफ़ी कॉमन हो जाती है क्योंकि एक दूसरे के करीब रहते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी तरह जॉइंट फैमिलीज में बहुत ज़्यादा होती हैं कि बस टो में लगे रहना, देखते रहना किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ये चीज़ें नापसंदीदा हैं, ये चीज़ें इनकी इजाज़त नहीं है, इनसे भी अपनी नज़रों को पस्त कर लें। फिर इसी तरह बाज़ औरतें सिर्फ शौहर को चिढ़ाने के लिए उसकी ज़िद में कहती हैं, ये इधर देखता है ना, ये औरतों की तरफ देखता है, तो ठीक है मैं भी फिर लड़कों की तरफ देखूंगी, हालांकि उसने अपना जवाब देना है, तुमने अपना जवाब देना, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हुक्म जैसे मर्दों को है कि अपनी नजरों की हिफाजत करें, इसी तरह औरतों ने भी अपनी नजरों की हिफाजत करनी है। वो कोई ऐसी फिल्में लगा के वो बैठ के नहीं देख सकती, नहीं मैं तो औरत ही हूं ना, मुझ मेरे से क्या फर्क पड़ता है, या मैं तो अब शादीशुदा हूं, अब मैं तो किसी को भी देखूं तो कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं है। या तो मैं तो अभी इस एज की हो गई हूं, मैं जो मर्जी चीजें देखती रहूं, ये भी नहीं, ठीक है। तो अपनी नजरों की हिफाजत, नंबर 2, वयहफजन फुरूजहुन्ना, और हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत का पहले भी आपको बताया था। नंबर 1, औरत का जो सतर है उसको ढके रहना चाहिए, और औरत का सतर मर्द से पूरा जिस्म है सिवाय चेहरे और हाथों के, और औरत का औरत से सतर कितना है, नाफ से घुटने तक। इसका मतलब है कि अगर औरतों के सामने, ऐसे नहीं कि जान बूझ के ही नंगे ही होकर बैठ जाओ, ये बात नहीं है, लेकिन मसलन कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है औरतों के सामने, जरूरतन उसने अपने सीने को खोला है, तो उसको गुनाह नहीं होगा इस पे, क्योंकि उसका औरत से, औरत का सतर नाफ से घुटने तक का है। या किसी औरत के छोटे बाजू उसने पहने हुए हैं, स्लीवलेस कोई पहन लेती है, कोई इस तरह की वो पहन लेती है चीज, तो उसमें उसको गुनाह नहीं है। हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन बात कही जाती है, अरबों अरबी तो बाहर अरबी औरतें बड़ी बुरके पहनती हैं, जरा इनकी मजलिसों में जाके देखो, ये वहां पे जाके तो इन्होंने छोटे छोटे ड्रेस पहने होते हैं और ऐसे किया होता है, और ये तो औरतें अगर औरतों की मजलिस में है ना, तो नाव से घुटने तक उसका सतर है, वो गुनाहगार नहीं होगी। अगर उसके बाजू भी खुल गए औरतों के सामने, या वो उसने कैप्रीज पहन ली है औरतों के सामने, या इस तरह की कोई चीज है, तो उसको गुनाह नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को बना के हम ये जवाब देते हैं कि वो तो देखें ऐसी हैं, और हम कितने अच्छे हैं कि हम हर जगह एक जैसे ही चले जाते हैं। तो वो भी फिर सुन लें आगे के क्या आता है इसमें। तो ये है कि औरत अपने जिस्म के पोशीदा हिस्सों को कहीं पे भी ना खोले। इसमें ना सिर्फ देखना उनका मना है और शर्मगाह की हिफाजत में ये भी आता है, और देखने में ये भी आता है कि ना देखा जाए ना टच किया जाए। ठीक है, किसी के सतर को, औरत औरत के सतर को भी इतनी जगह पे टच नहीं कर सकती, ना नंगे होके किसी के साथ इस तरह जिस्म से जिस्म मिलाया जा सकता है। नंबर टू बात इसमें आ जाती है कि जिना से और ऐसी होमोसेक्सुअलिटी में पढ़ने से और ऐसी चीजों से सबसे परहेज किया जाए, जैसे कि मर्दों को बताया था, इसी तरह औरतों के लिए भी है। ठीक है, अच्छा, ये तो आसानी बात थी इसलिए क्योंकि इतना हिस्सा हम बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं मर्दों के। उसमें भी एक खातून ने एक दफा सवाल किया था कि मर्दों को तो आप बताती हैं कि औरतें उनके लिए अवेलेबल रहें या उनकी जरूरत पूरी करें, लेकिन औरत की भी एक जरूरत होती है, तो क्या मर्द को नहीं गुनाह होगा कि वो अगर अपनी बीवी की जरूरत पूरी नहीं करता? तो बेशक बिल्कुल गुनाह होगा। अगर कोई मर्द अपनी बीवी को ऐसे ही छोड़े रखता है, 4 महीने से ज्यादा किसी मर्द को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवी की जरूरत ना पूरी करे, काइंड ऑफ सजा के तौर पे उसको छोड़े रखे कि ठीक है तुम भी ऐसे ही रहो, और खुद कहीं और जाता रहे, या खुद उसकी दूसरी बीवियां, लेकिन एक बीवी को उसने लटकता हुआ ऐसे 4 महीने से ज्यादा कोई आदमी नहीं छोड़ सकता, अनलेस कोई बीमार है या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या कोई सफर में है, दूसरे मुल्क में रहता है, वो अलग बातें। लेकिन औरत की भी जरूरियात है, और मर्द को ये सोचना चाहिए कि इसकी भी इज्जत की हिफाजत इसी में है। ठीक है, अच्छा, अब जो आगे दो हुक्म और है एडिशनल, जो सिर्फ औरतों को है, मर्दों के तो यहीं तक थे ना, तो हमने वो पढ़ लिए, औरतों के इससे ज्यादा है आगे। औरतों के लिए तीसरा हुक्म है वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हर मिन्हा, नंबर 3 है ये, और नंबर 4 है वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना आला जुयूबिहिन्ना। ठीक है, ये नंबर 4 ये हो गया, नंबर 3 था वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना। अब देखते हैं कि क्या एडिशनल हुक्म औरतों को दिए जा रहे हैं। तीसरा हुक्म देखें, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और ना जाहिर करें अपना बनाओ सिंघार, अपने बनाओ सिंघार को जाहिर ना करें। इससे क्या पता चलता है कि औरत के लिए जीनत करना बिल्कुल जायज है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो औरतें जीनत ना करें, औरतें खूबसूरत ना अपने आप को बनाएं या खूबसूरत ना लगें। इस पे इस्लाम कोई पाबंदी नहीं लगाता, इस्लाम ने इसको हराम नहीं किया। इस्लाम औरत के जीनत के इख्तियार को जायज समझता है, उसको यह हक देता है कि वो जीनत करे। देखें, हम बाज दफा ये सोचते हैं कि हम दीन की तरफ आ गए हैं, तो अब इसका मतलब है बस मैं इस तरह मुंह बसोरे बैठी रहूं, कंघी कर ली और एक सफेद जोड़ा पहन के बैठी हूं, और ये है मैं दीनदार बहुत हूं, ये सादा बहुत है। क्या इस्लाम तो नहीं आपको रोकता कि जीनत करें, अपनी अपने आप को ब्यूटीफाई करें, खूबसूरत लगे। जबी तो ये हुक्म आया ना, जाहिर ना करो, ये नहीं कहा गया कि करना ही नहीं है, क्योंकि ये औरत की फितरत है कि उसका दिल चाहता है कि वो खूबसूरत लगे, और वो उस अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए डिफरेंट चीजें करती है। हाँ, पाबंदी किस पे है? जीनत के इजहार पे पाबंदी है, जीनत करने पे पाबंदी नहीं है। और इसको कोई दीनदारी ना समझे कि हम तो जीनत ही नहीं करते, ना हम जेवर पहनते, ना मेकअप करते, ना हम कुछ करते, बस कुछ करते ही नहीं है हम। ये हम कितनी दीनी तौर पे कितने बहुत आगे हैं, और बाकी लोग जो ये करते हैं उनको लोग ऐसे देखते हैं, अच्छा तो आप तो दीनदार हैं फिर आप इस तरह क्यों, मतलब जेवर भी पहना हुआ है सब, अच्छी भली अच्छी भी लग रही, क्यों ऐसे हैं? तो अल्लाह ताला ने तो ये हक दिया है औरत को। हाँ मगर क्या है कि वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, जाहिर ना करें, यानी ये जीनत हर आंख के लिए देखने के लिए नहीं है, हर एक के लिए अवेलेबल ना रहो, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखेंगे जीनत क्या है जिस पे कहा गया कि इसको इजहार नहीं करना, क्या चीज है जो जिसको डिस्प्ले करने से मना किया गया। देखें जीनत दो तरह की होती है, एक तो वो जीनत है जो नेचुरल है आपकी जीनत, मसलन है कि आपका फिगर है, मसलन है कि आप कि अल्लाह ने खूबसूरत आवाज दी हुई है, या आपके खदो खाल और आपका कद काठ अच्छा है, ये सब ये एक जीनत हो गई। एक जीनत है जो आप अपने आप को खुद ब्यूटिफाई करते हैं, यानी आप अपने लिए खुद उसको इख्तियार करते हैं, जैसे कि आपका मेकअप है, जैसे कि आपके जेवरात हैं, जैसे कि आपके लिबास है, ये सब हम खुद इख्तियार करते हैं ना, ये लिबास भी इंसान के लिए जीनत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के लिए अपनी जीनत इख्तियार करो, और वहां पे जीनत लिबास को कहा गया सूरह आराफ में, ठीक है। तो क्योंकि लिबास भी खूबसूरती होती है ना, जभी तो हम लिबास उस पर देखें कितनी मेहनत करते हैं, कितने चक्कर हमारे दर्जियों के लगते हैं, और फिर ना सिर्फ ये चीज, एक कपड़ा लेते हैं और उसके ऊपर कितनी चीजें लगाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, कहीं लेस लग रही है तो कहीं बटन लग रहे हैं तो कहीं ये लग रहा है वो लग रहा है, तो लिबास भी जीनत है। पहले हमें जीनत को समझना है कि जीनत क्या चीज है, ठीक है। अच्छा नेचुरल चीजों में ये औरत का सीना भी जो है, उसके बाल भी जो हैं, ये उसके फीचर्स भी हैं, ये नेचुरल जीनत है ना, ये भी सारी जीनती की चीजें हैं, मगर ये नेचुरल जीनत है। और बाकी जो आर्टिफिशियली हम अपने आप को जीनत देते हैं उसमें वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हम खुद यूज करते हैं, आप मेकअप के अंदर जितनी भी चीजें मेकअप की हो गई, जितनी भी चीजें जेवरात की हो गई, जितनी भी चीजें हम खुशबुएं लगाते हैं, हम कपड़े हैं, पर्स हैं, ये हैं, जिन चीजों से भी हम अपने आप को ब्यूटीफुल करते हैं, ठीक है। फरमाया इनको जाहिर नहीं करना, अब ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि इनमें से कोई भी चीज ना जाहिर हो। मैंने हाथ में पर्स पकड़ा हुआ है वो तो जाहिर हो रहा है, मेरे फीचर्स हैं वो तो जाहिर हो रहे हैं, मैं इतनी लंबी हूं वो तो जाहिर हो रहा है, ये तो चीजें जाहिर हो रही। मगर तो फरमाया इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, जो जाहिर हो जाए, ये नहीं कि जो जाहिर की जाए, एक होता है जाहिर खुद करना और एक होता है जाहिर हो जाना, और हो जाने वाली चीजें क्या हैं, जो खुद ब खुद जाहिर हो जाती हैं। अब हाइट है वो आप छुपा नहीं सकते, चाहे आप कितने भी पर्दों में चले जाएं, कोई औरत पतली है या मोटी है वो नहीं छुपा सकती अपनी इस चीज को, अपनी चाल नहीं छुपा सकती, अपनी आवाज को नहीं छुपा सकती, अपने जिलबाब को नहीं छुपा सकती, जो उसने ऊपर जो चादर ली हुई है या जो उसका अबाया है या वो है, ये तो नहीं छुप सकता, इसको भी अब क्या एक और कवर में बंद कर दे, फिर हाथ भी बाहर होंगे, उन हाथों पे हो सकता है कोई मेहंदी लगी हो सकता है, कोई अंगूठी हो सकता है, ये चीजें हो तो वो जाहिर है, वो भी जाहिर हो जाएंगी खुद ब खुद। तो जो जाहिर होने वाली चीजें हैं इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसमें मुफस्सिरीन ने सुरमे को लिया, अंगूठी को लिया, कड़ों को लिया है, ब्रेसलेट हो गए, और आवाज है, चेहरा है, हथेलियां, इनको लिया। तो जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, हालांकि चेहरा भी एक ब्यूटी है, मगर जो खुद ब खुद जाहिर हो जाए, उसके सिवा बाकी सब जीनतों को तुमने छुपाना है। अब ये जो इल्ला मा ज़हरा मिन्हा है ना, इसके अंदर दो तफसीरें हैं, और ये तफसीर अगर आप समझ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आगे जाके भी ये समझने में कि ये जो चेहरे का पर्दा है या ये है, इसके बारे में क्या अहकामात है इस्लाम के, ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखें इसमें दो तफसीरें आती हैं, एक तो अब्दुल्ला बिन मसूद की है, एक अब्दुल्ला बिन अब्बास की है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया है कि ज़हरा मिन्हा में जिस चीज को एक्सेप्शन दी गई है कि चलो ये जाहिर हो जाए तो कोई बात नहीं, सबको तुमने पहले क्या कह दिया, सबको तुमने छुपाना है, कोई जाहिर ना हो, एक्सेप्ट ये चीजें, ठीक है, जो जाहिर हो गई खुद उनमें अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या एक्सेप्शंस ली हैं, जिलबाब या बाया या बुरका या लंबी चादर, उसको उन्होंने एक्सेप्शन दी है, क्योंकि ये है इसको ऊपर लिया जाता है, इसको तो अब छुपाना मुमकिन ही नहीं है ना, अब कपड़ों को छुपाने के लिए इसको ऊपर लिया, अब इसको छुपाने के लिए तो कोई और कपड़ा नहीं ले सकते ना, ठीक है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया कि इस ज़हरा इल्ला मा ज़हरा मिन्हा से मुराद चेहरा और हथेलियां, यानी चेहरा और हाथ, क्योंकि जब औरत किसी जरूरत से बाहर निकलने पर मजबूर हो तो नकलो हरकत और लेन देन के वक्त चेहरे और हथेलियों को छुपाना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन मसूद की तफसीर के मुताबिक तो गैर महरम मर्दों के सामने औरत को चेहरा और हाथ खोलना भी जायज नहीं है, और अब्दुल्ला बिन अब्बास की तफसीर के मुताबिक चेहरा खोल सकती है, हाथों की हथेलियां यानी हाथ खोल सकती है गैर महरमों के सामने भी, ठीक है। इस इख्तलाफ की वजह से आपको ये मिलता है जो कि जो नकाब का मसला के क्यों कुछ लोग लेते हैं कुछ लोग नहीं लेते तो क्या है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इस पे सब का इत्तेफाक है कि अगर चेहरे पर नजर डालने की वजह से फितना पैदा होता हो, नहीं वो माशरा ऐसा हो गया है यहाँ पे लोग चेहरे की तरफ भी देखते हैं घूरते हैं, और औरत कहीं जा रही है तो उसको चेहरा ही खुला हुआ है तो उसी को देखते रहेंगे, तो औरत का फिर चेहरा खोलना भी जायज नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी इसके ऊपर बात हो गई, और ये भी है कि इमाम मालिक हो गए, तमाम जो इतने भी आइम्मा कराम हैं, शाफई हैं, हनफी हैं, सब कहीं पे भी ये नहीं है कि चेहरा और हथेलियों के ये एक एक्सेप्शन दी गई है, इसके अलावा भी आप चीजें खोल लें, अपने कपड़े दिखाएं, अपने ये दिखाएं, कहीं किसी ने भी और चीजों में इख्तलाफ नहीं किया, सब का इस पे इत्तेफाक है कि बाकी सारा ही कवर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो जहां पे ये चेहरे की बात आती है, औरत किसी मजबूरी जरूरत से बाहर निकलती है और या कोई वैसे उसको बाहर कभी जाना होता है, उसका चेहरा खुल जाता है, या कोई देखे किसी अदालत के अंदर अपनी शनाख्त करानी है, किसी एयरपोर्ट पे अपनी शनाख्त करानी है, किसी जगह अपनी शनाख्त ऐसी करानी है, सिक्योरिटी पर्पस है, मर्द उसके ऊपर कोई शहवत की नजर से नहीं देख रहा, बल्कि कोई सिर्फ एक उसके लिए कि ये जो है ना यही औरत है या नहीं, अगर वो चेहरा खोल लेती है तो फिर उस पर कोई हरज नहीं है, ठीक है। ये यहां तक ये बात हो गई। अब देखें, अगर हम इस बात की लिस्ट बना लेना किस किस तरह हम अपने आप को ब्यूटीफाई करते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें एक शक्लो सूरत दी हुई है, एक जिस्म दिया हुआ है, उसको निखारने के लिए, उसको मोर ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब जीनत में आ जाता है, और उस सब को छुपाना जरूरी है, उस सब को छुपाना जरूरी है, क्योंकि यहां पे कहा गया जीनत जाहिर ना करो सिवाय जो जाहिर हो जाए, और जो मैंने जाहिर हो जाए का बताया, खुद ब खुद जो जाहिर हो रही है उसको छुपाया नहीं जा सकता, उनमें आपको एक्सेप्शनल केसेस बता दिए। इसके अलावा जाहिर करने का सवाल ही नहीं है कहीं पे भी, मेकअप को जाहिर करना है या नहीं कर सकते या कर सकते हैं, ये तो फिर सवाल ही खत्म हो गया ना, क्योंकि जितनी चीजें हैं सभी छुपाई जाएंगी, जितनी बता दी उनके अलावा। जाबिर बयान करते हैं कि अस्मा बिनते मुर्शिदा बनु हारसा में अपने खजूरों के बाग में थी और औरतें उनके पास बगैर चादर ओढ़े आने लगी जिससे उनकी पाजेबें सीने और मीडियां नंगी होती थी। अस्मा ने कहा यह कितनी बुरी बात है जिस पर ये आयत उतरी। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे एक इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में एक मैंने आपको बताया ना चादर का भी आ जाता है, जिलबाब का भी। जिलबाब अब हो सकता है कोई रेशमी जिलबाब हो या कोई उसमें छोटा मोटा प्रिंट हो सकता है, फिर कोई छोटी मोटी कोई और ऐसी चीज लगी होती, अब उसको तो नहीं छुपा सकते क्या? हाथ अब बाहर निकले में अगर उनके पर मेहंदी लगी, मेहंदी को कैसे छुपाएंगे? अंगूठी हो सकती है उनपे पहनी हुई, उसको कैसे छुपाएंगे? ये तो सब खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। तो अब इसके बाद मुझे बताएं कहाँ पे ये गुंजाइश मिल सकती है कि हम स्काफ पहले हम सोचते हैं ये हमने उसको ये समझा हुआ हिजाब जो वर्ड है ना जिसको हम हिजाब कहते हैं ये वो हिजाब नहीं है जो इस्लाम में है। आपने स्काफ को हिजाब समझ लिया, ये हिजाब नहीं है। इस्लाम कहता है आपकी जीनत ना जाहिर हो, यानी कपड़े भी आपकी जीनत है वो भी जाहिर नहीं होने चाहिए। ना वो दलील कुरान से दिया, कुरान में कपड़ों को जीनत कहा गया। हम कहते हैं ढीले कपड़े पहने के, ना ढीले और टाइट की बात ही नहीं है, बात यह है कि कपड़े जो आपने एक कवरिंग अपनी जो अपने जिस्म को छुपाने के लिए जो आपने कपड़े पहने होते हैं इनको कवर करना जरूरी है। सूरह अज़ाब में इसकी जो बाहर का लिबास है ना उसकी बहुत डिटेल अच्छी तरह आ जाती है, वहां पे जिलबाब का लफ्ज भी है और वहां पे पता चल जाता है कि बाहर जाने के वक्त क्या करना है। आप देखें आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि उनके रजाई भाई की बेटी आई उनके घर, तो इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इनको देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया या रसूलल्लाह ये तो मेरी भतीजी है। आपने फरमाया जब औरत बालिग हो जाए तो उसके लिए हलाल नहीं है कि वो जाहिर करे इस और इसके सिवा, अपने मुंह और हाथ के सिवा, और हाथ की हद भी आपने बताई। हाथ का मतलब ये नहीं है कि स्लीवलेस हो जाए, हाथ की हद भी बताई कि मुट्ठी लेके और हथेली और मुट्ठी के दरमियान सिर्फ एक मुट्ठी की जगह थी इतना, नहीं मुंह और हाथ के अलावा कोई चीज डिस्प्ले नहीं कर सकती जब बालिग हो जाए। बालिग हो जाए और अस्मा रज़िला तलाना आयशा रज़िला तलाना की बहन है उनके पास आई हुई थी तो बारीक कपड़े पहने हुए थे। आपने देख के मुंह फेर लिया, फरमाया अस्मा जब औरत बाले हो जाए तो उसके लिए जायज नहीं है कि मुंह और हाथ के सिवा उसके जिस्म का कोई हिस्सा भी नजर आए। यानी आप ऐसे कपड़े भी नहीं पहन सकते जो कि इतने बारीक हों कि जिसमें से जिस्म झलके, ये तो औरतों के सामने भी नहीं पहना जा सकता क्योंकि उसमें से तो फिर सतर भी जाहिर हो जाता है बारीक जब कपड़े होंगे। तो जो हमने सोचा हुआ कि ये मैंने बालों को कवर करना शुरू कर दिया तो ये मेरा हिजाब हो गया, हिजाब नहीं हुआ। अभी आपने अपना सिर्फ सतर कवर किया, ठीक है। फिर फरमाया वल यद्रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न, अपने चाहिए कि अब डाल ले अपनी ओढ़नियों को अपने गिरेबानों पर, अपने ओढ़निया अपने गिरेबानों पर डाल लें। इसके लिए इसका मतलब क्या है? एक तो सबसे पहले ये आपको बता दूं, साथ साथ आपको इतराजात की भी बात बताती जाती हूँ, साथ फिर इंशाल्लाह ये आयतें भी समझते जाएंगे हम। इतराज किया जाता है कि कुरान करीम में कहाँ लिखा है कि बालों को कवर किया जाए? खिमार जो है ना वो सर को कवर करने का ही कपड़ा है। उस कपड़े को अरब में उस जमाने में जाहिलियत में औरतें सर पे सर को कवर करती थी, जिसको हम आज हिजाब समझते हैं ना, वो ये तो इतना तो वो भी करती थी, वो सर को कवर करती थी, मगर वो क्या करती थी, सर को कवर करके और वो जैसे हमारी दुल्हने दुपट्टा पीछे डाल लेती है ना कि सारे आगे से जेवर और ये सब नजर आए, तो वो इस तरह से पीछे डाल लेती थी। उनको भी जाहिर शौक था, ये तो हमेशा से औरत को शौक रहा है अपनी जीनत करने का और फिर उसको दिखाने का भी, तो वह पीछे कर लेती थी अपने पल्लू जो थे दुपट्टे के। तो कहा गया कि पीछे नहीं करना, इसको अपने सीनों पे डाल लो, आपके सीने जैसे हम जिसको कहते हैं ना बुक्कल, बुक्कल समझते हैं लफ्ज, ऐसे बुक्कल मार लो है ना, आप अपने सीने के आगे कर लो, जिससे फिर सीना भी ढक जाएगा, फिर ये यानी गला भी ढक जाएगा, ये सब ढक जाएंगे ना, फिर कवर हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप सब बहुत तवज्जो से इन आयात को सुने। देखें, अमल करना कराना मेरा काम नहीं है, ठीक है, लेकिन इन आयात को गौर से सुनना, इनको समझा देना, ये मेरा काम है कि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए, कोई जरा सी भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब जो कहते हैं ना कि नहीं, सर का कहाँ पे जिक्र है, बालों का कहाँ पे जिक्र है, तो भाई खिमार तो है ही सर का कपड़ा, उसको ये नहीं कहा गया अभी सर से उतार के इसको सीने पे डाल लो। हम बाज लोग सीने को कवर कर लेते हैं, सर नंगा होता, सर को सर से उतारने को नहीं कहा गया, कहा गया वो जो सर का कपड़ा है उसी से सीने को भी ढांप लो। सही, ये ऐसे ही है जैसे कि अगर मैं कहूं आपको कि आप अपना जूता अपने एंकल से ऊपर कर लें, ऊपर तक पहने, आप अपना जूता अपने एंकल से ऊपर तक पहने, तो आप ऐसा नहीं करेंगे जूते को उतार के एंकल से ऊपर बांध लें, ये मतलब नहीं है। जूते का मतलब ही क्या होगा, जूता किधर पहना जाता है, सबको पता है कि पैर में ही पहना जाता है, हाथ में पैर के पहन के तो नहीं, हाथ में पहनने की चीज तो नहीं जूता। जूता लफ्जी बोल दिया तो आपको समझ आ गई कि उस पे अगर आपको पूछा जाए पैर कवर करने का कहाँ है, तो आप कहेंगे भाई जूता है ही पैर का लिबास। इसी तरह खिमार जो है ना, है ही सर का लिबास। अब जिनको नहीं समझ है, ना कभी कुरान पढ़ा, ना कभी अरबी की समझ, ना ये समझ गए खिमार क्या होता है, फिर वो यही एतराज करेंगे बाल कहाँ लफ्ज लिखा हुआ, हमने तो कुरान छान मारा, कभी बालों का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ, बाल कवर कैसे करने हैं फिर, तो खिमार क्या है फिर। उसी को कहा गया, जैसे आपको जूते की मिसाल दी, उसी को कहा गया कि इसी खिमार से ही अपने सीनों को ढांप लिया जाए। और ये ना सोचें कि ये जो खिमार हम जिसको आज दुपट्टा कहते हैं, जो सी थ्रू है, जो इतना छोटा है कि उससे सर भी नहीं ढका जा सकता, सीना तो क्या ढकेगा, ये वो वाला नहीं है जिस हम समझते हैं ना, दुपट्टा दुपट्टिया होती है वो तो छोटी सी, पता नहीं क्या होता है, या एक रस्सी होती है, इससे मुराद है वो चादर जिस जो इतनी हो कि सीने पे भी ओढ़ ली जाए, ठीक है, जो जिस्म को ढांप ले, सही, उसको कहा गया खिमार। तो उससे सर भी ढांपना है और सीना भी ढांपना है। अब जब ये आयत उतरी तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है अंसार की औरतों की तारीफ करती हैं, फरमाती हैं कि अंसार की औरतें कैसी हैं, कि जब ये आयत उतरी और मर्दों ने जाके अपने घरों में इस आयत को सुनाया, तो जो औरतें थीं उन्होंने किसी ने अपनी चादरें पकड़ी और उनके खिमार बनाए। चादर से मतलब ये नहीं कि जो चादरें ऊपर लेती थी अब उसको फाड़ फाड़ के छोटे छोटे दुपट्टे बना लिए, ये नहीं, घर में जो यूज होती हैं चादरें, कहीं उनके तो पर्दों के तौर पर भी चादरें ही यूज होती थी, ऐसे हमारे जैसे फैंसी पर्दे तो होते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी चादरों को लेकर, किसी ने चादर ली, किसी ने अपना ये कमर बंद लिया, तहबंद जो नीचे पहनते थे ना वो लिया, वो उसका भी मोटा कपड़ा होता था, फाड़ के उसकी फिर खिमार बना लिए। और अगले दिन वो खिमार लिए हुए थे उन्होंने, यानी ऐसा उनकी फरमा बरदारी थी, उनकी ऐसे उनके अंदर शौक था अमल करने का कि उन्होंने इंतजार नहीं किया। माली तौर पे तो इतने ज्यादा थोड़ी वो लोग स्ट्रांग थे कि बाजारों से जा जाके और नए अबाय और स्काफ खरीद के ले आए, बल्कि उन्होंने जो उनके घर में ही चादरें पड़ी हुई थी उन्हीं के खिमार बना लिए। अच्छा, अब कहा गया इन खिमार को सर पे भी लेना है, सीने पे भी लेना है। इसका मतलब है कि ये जो कानों के जो जीनत है वो भी छुप जाएगी, कंधे भी छुपेंगे, गर्दन के हार भी छुप जाएंगे, क्या ये भी समझ आ गई। वला युबदीना जीनतहुन्ना, और ना जाहिर करें अपनी जीनत को, अपनी जीनत को जाहिर करना ही नहीं है, मगर जो जाहिर हो गई और बता दिया कि कौन सी चीज जाहिर कर सकते हैं और दूसरा किन के सामने जीनत जाहिर कर सकते हैं। एक लिस्ट दे दी गई, लिस्ट उन महरम रिश्तों की जिनके सामने जीनत का इजहार हो सकता है, और लिस्ट में भी जितने लोग हैं सबके सामने एक जैसा जीनत का इजहार नहीं होगा, बल्कि जैसे जैसे उनके दर्जे हैं उसी तरह उन लिस्ट में उनके नाम आ रहे हैं। इल्ला लिबउलतिहिन्ना, सिवाय अपने शौहरों के, सबसे ज्यादा औरत की जीनत को देखने का हक उसके शौहर को है, इसलिए अपने शौहर के सामने जीनत को खोल सकती है। ये अब लिस्ट है जिन जिन के सामने खोल सकती है, सही, किन किन के सामने खोल सकती है। नंबर वन, शौहर के सामने खोल सकती है, बल्कि उसके सामने तो जीनत करना पसंदीदा है, क्या? और उसको दिखाने की नीयत से जीनत करना सवाब का काम है। तो शौहर के सामने अपनी जीनत खोल सकती है, और किसके सामने? औ आबाई हिन्ना, या अपने बापों के सामने खोल सकती है, जो उसका बाप है, और बाप के अंदर फिर नाना भी आ जाते हैं, दादा भी आ जाते हैं, ये सब भी बाप की जगह है, और इसी तरह शौहर के वालिद भी आ जाते हैं और शौहर के दादा नाना भी आ जाते हैं, ठीक है? इन लोगों को एग्जेम्प्ट क्यों किया गया? इसलिए कि ये ऐसे रिश्ते हैं जिनमें नेचुरली इस रिश्ते की तरफ मिलान नहीं होता। मसलन बाप है, उसका नेचुरली नहीं मिलान होता अपनी बेटी की तरफ जिनसी तौर पे, और तो इनसे कोई खतरा नहीं होता औरत को। औ आबाई बउलतिहिन्ना, या अपने शौहरों के बापों के लिए, वो भी आ गया देखे यहाँ पे। औ अबनाइहिन्ना, या अपने बेटों के लिए, वो उसको वो जीनत का इजहार उनके सामने भी कर सकती है, यानी अपने मेकअप किया हुआ, अपने जेवर पहने हुए अपने, मगर ये याद रखें इनके सामने सतर नहीं खोल लेना कि बनियाने पहन के घर में फिर रहे हैं, स्कर्ट पहन के घर में फिर रहे हैं, हाँ ऐसे ब्लाउज पहने हुए, साड़ियां पहनी जिनसे सारा पेट नजर आ रहा है, कमर नजर आ रही, वो इनके सामने भी नहीं खोल सकते कि बाप के सामने खोल लिया या सिवाय शौहर के। मैंने आपको बताया ना, इनमें भी सब के एक जैसा नहीं होगा कि सब भी के सामने खोल लिया, नहीं, ये सतर है, सतर तो सबके सामने ऐसे नहीं खुलेगा। सतर में मैंने आपको बताया कि पूरा जिस्म आ जाता है सिवाय चेहरे के, हाथों के, इसी तरह अपना सर, कलाइयां, पिंडली वगैरह, ये इतनी सी खुल सकती है, इतनी सी कलाई हो गई, इतने से, यानी ये जो पिंडली से मतलब है, ये जो आपके एंकल्स हैं, तो इतनी सी इनमें से किसी के सामने खुल जाए कोई मसला नहीं है। सर नंगा है तो कोई ऐसा नहीं है कि बाप के सामने सर पे जरूरी दुपट्टा लेके जाना। पहले जमाने में चूंकि ये इल्म तो होता नहीं था, तो बाप जब आता था तो उसके सामने तो सर खूब कवर कर लिया जाता था, लेकिन बाकी नौकरों के सामने भी खुले हुए हैं, देवर जेठों के सामने भी खुले हुए हैं, सबके सामने खुले घूम रहे, ये इल्म नहीं था ना, सिर्फ एक कल्चर था। तो बेटे में भी पोते भी आ गए, नवासे भी आ गए, क्या पड़पोते भी आ गए, सके भी सौतेले भी। औ अबनाई बउलतिहिन्ना, या अपने शौहरों के बेटे, शौहरों के बेटे कौन है, यानी सौतेले बेटे, शौहर के अगर पिछली बीवी से, दूसरी बीवियों से कोई बेटे हैं, कोई औलादे हैं, तो उनसे औरत का वो नहीं है पर्दा के वो पर्दा करे उनसे और उनके सामने जीनत ना खोले, ऐसे नहीं, उनके सामने भी अपनी जीनत के साथ आ सकती है। अच्छा, बेटों में मुंह बोले बेटे नहीं आते कि मैंने बेटा बनाया हुआ है, वो नहीं, ठीक है। आओ इख्वानी हिन्ना, या अपने भाइयों के, सके भाई भी अगर सोतेले भी, माँ की तरफ से जो एक भाई है या बाप की तरफ से जो भाई है वो भी इसमें शामिल है, और रजाई भाई भी शामिल है, लेकिन मुंह बोले भाई नहीं। आओ बनी इख्वानी हिन्ना, और भतीजे, और भतीजों के बच्चे। आओ बनी अखवाती हिन्ना, या अपने भांजे या भांजों के बच्चे। आओ निसाई हिन्ना, या अपनी औरतों के, अपनी औरतों से मतलब क्या है, ऐसी औरतें जिनके ऊपर इंसान को भरोसा है कि ये कोई बाहर जाके बातें नहीं करेंगी, कोई औरत की बात बताएंगी नहीं बाहर जाके। बाज ने अपनी तफसीरों में लिखा है, बाज मुफसरीन ने, कि इससे मुराद ये है कि सिर्फ मुसलमान औरतों के सामने खोल सकते हैं, काफरों के सामने नहीं खोल सकते। हालांकि आप ये देखें कि अजवाज मुतहरात के पास हमें कई दलीलें मिलती हैं, यहूदी औरत आई, उसने ये पूछा, उसने ये कहा, तो गैर मुस्लिम औरतें तो आती थी उनके पास, उनसे पर्दे तो नहीं करती थी। मगर ये बात है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, ऐसी औरतें जो जैसे जिनसे इंसान को ये खतरा हो कि ये बाहर जाके कोई बात करेंगी, अच्छी जिसको कहेंगे चाल चलन वाली नहीं है, अच्छा कैरेक्टर नहीं है इनका। बाज़ अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बाज़ औरतें धंधे करती हैं, वो इसी तरह लड़कियों को देख के फिर जाके बाहर सौदेबाजियां करती हैं या ऐसी करती हैं, उनके सामने जायज नहीं है। लेकिन बाकी जो भरोसे वाली औरतें हैं, जिनका पता नहीं है किसी को बयान करेंगी, तो वो उन औ मामलकत अईमानुहुन्ना, या मालिक हुए उनके दाएं हाथ, यानी बांदियां जो लौंडियां हैं, ठीक। बाज ने इसमें गुलाम नहीं लिया, सिर्फ लौंडियां लिया है। और बाज कहते हैं नहीं, गुलाम भी इसमें शामिल है, हाँ मुकातबत हो जाए तो फिर उसे पर्दा करना। ये मुकातबत क्या होती है वो आगे देखेंगे। अब तबीईन गैरी उलिल इरबाती मिनर रिजाल, या जो पैरवी करने वाले हैं नई हाजत रखने वाले मर्दों में से, यानी ऐसे मर्द जिनका सिर्फ घरों में है रखे हुए, वो नौकर हैं, उनको कोई शहवत नहीं है, औरतों से कोई दिलचस्पी ही नहीं है, बस उनको ये है कि हमें खाना पीना दे दिया जाए, हमारा ये दे दिया जाए, वो यानी औरतों की तरफ उनकी अट्रैक्शन ही नहीं है, या तो बदहवास किस्म के लोग हैं, या फिर ऐसे लोग हैं जो नामर्द हैं, या कोई अहमक बेवकूफ हैं जो पागल से हैं, इस तरह के लोग हैं, यानी उनको औरतों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। या हिजड़े भी हो सकते हैं जिनमें औरतों वाली खसूसियात हो, औरत के जेरे दस्त हैं, यानी जेरे दस्त मतलब नौकर हैं, उनके पैर भी करने वाले से ये मतलब है, जिनमें शहवत ना हो, बस ऐसे ही खाना पीना दे दिया, ये वो नहीं, इधर इस तरफ को नहीं उनका ध्यान। अब तिफ्ल लदीन लम यधहरु अला औरातिन निसा, या वो बच्चे जो हैं जो अभी औरतों की छुपी हुई बातों को नहीं जानते, यानी अभी बालिग ही नहीं हुए, उनके लिए उनको ये डिफरेंस नहीं पता कि औरत कौन सी और आदमी क्या है और डिफरेंस क्या है, और ये वो चीजें नहीं उनको पता। इनके सामने औरत अपनी जीनत के साथ आ सकती है, बाकी किसी के सामने नहीं आ सकती। अब हम सोच लें कि जब हम बनाव सिंघार करके घर से निकलते हैं, हा? और हमारा बनाव सिंघार सारा जाहिर हो रहा होता है, तो जिनके सामने जाहिर होता है क्या वो इस लिस्ट में मौजूद है? क्या वो इस लिस्ट में मौजूद है? अगर नहीं है तो फिर हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे तो साफ तौर पे कहा गया वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, ये किसका हुक्म है? तुम्हारी जीनत नहीं जाहिर होनी चाहिए। इस शैतान आके यहीं पे डाका डालता, यही कहता थोड़ा सा करने से क्या फर्क पड़ता, थोड़ा सा मेकअप कर लो, अच्छी लगोगी, ऐसे बीमार सी लगने लगी हुई हो, देखो आंखें ऐसी सोई सोई लग रही हैं, देखो ऐसे लग रहा है, ये हो रहा है, इस तरह करके उसको ये चीज की तरफ मायल करता है कि वो अट्रैक्टिव बन के खुद को ब्यूटिफाई करके और बाहर निकले। और देखें अल्लाह ताला ने तो खास तौर पे ये फरमा दिया कि जीनत जाहिर ही नहीं करनी, और हमारी तो क्या क्या जीनतें जाहिर होती, क्या क्या जीनतें हम जाहिर करते हैं। इवन अगर स्कार्फ भी, मैं स्कार्फ कहूंगी, अब हिजाब नहीं उसको कहूंगी, क्योंकि हिजाब जब कहते हैं तो फिर वो दूसरा माना है इस्लाम, हमने वो सब स्कार्फ को ही लेने को हर चीज ही समझ लिया, पता नहीं हमें, मैंने तो इस्लाम का पूरा हुक्म मान रही हूं क्योंकि मैं अब हिजाब करती हूँ। भाई हिजाब करती हूँ तो क्या आपने स्कार्फ लिया? सिर्फ देखिए जब स्कार्फ लेके फिर उसके बाद ये इयररिंग्स नजर आने, इसको स्कार्फ को पीछे कर लेना कि कानों के सारे इयररिंग्स नजर आए, स्कार्फ को इतना नीचे कर लेना कि गले का जेवर नजर आए, तो वो क्या है फिर? जीनत का इजहार नहीं है? और दुल्हन के लिए तो खास तौर पे सीना भी खोला जाता है ताकि अच्छी तरह ये सारे जेवर नजर आए। और सीने का तो स्पेशली यहाँ पे कहा गया, हमारे तो स्कार्फ ही इतने छोटे होते हैं कि वो ऊपर ही लपेट लपेट के लपेट सारे सर पे ही लपेटे लपेटे पूरा थान लपेटा होता है सर के ऊपर। हालांकि आप ये देखें सीने को कहा गया कवर करो। इवन जब हम अबाया भी पहन लेते हैं, अबाया भी क्या है, वो भी सिर्फ ये है कि जो जिलबाब जिसको कहा गया कि ये कपड़ों को भी कवर, ये जो कपड़े हैं ये हमारी जीनत है, इसको कवर करने के लिए जिलबाब लो जो आगे सूरह अजाब में आएगा, उसी को सी दिया गया तो एक अबाया बन गया। ठीक है, अब वो ये ना हो अगर वो भी इतनी फिटिंग वाला है जितने का कपड़े फिटिंग वाले हैं तो फिर वो चादर कहाँ रह गई। वो चादर तो इसलिए थी ताकि ना खदो खाल नजर आए, ना सीने का पता चले, ना और औरत का फिगर नजर आए। तो अगर उसी से फिगर सारा एक एक नजर आने लगा और सीने से इतना टाइट है कि वो सीना ही सारा पता चल रहा है और स्कार्फ इतना ऊंचा है कि वो भी नहीं काम दे रहा, तो फिर मुझे बताएं कि फिर तो जीनत का इजहार ही हो गया ना। तो नुमाइश नहीं की जा सकती इन एरियाज की, इन जगहों, इन अपने बॉडी पार्ट्स की, ना ही जो आर्टिफिशियल तौर पे जीनत की गई है उसको जाहिर किया जा सकता है। जो इवन ऊपर कवर करने के लिए जो हिजाब जो जिलबाब है उसको भी नहीं ऐसा होना चाहिए कि वो इटसेल्फ जीनत बन जाए। जब वो इतना अट्रैक्टिव होगा, जब वो इतने कलरफुल होगा, ऐसे कलर्स का होगा, जरूरी नहीं आप काला ही बनाएं, किसी और कलर, मगर अगर उसके ऊपर सलमे सितारे लगे हुए हैं, काम हुए हुए हैं, ऐसे इतना फैंसी है कि वो इटसेल्फ एक अट्रैक्शन बन गया, तो फायदा क्या फिर। अब तो आपको तो कहा गया जीनत को छुपाना है, बस एक बात को अगर आप जहन में रखेंगे ना, जीनत जाहिर नहीं करनी, तो सारी कामी ये कितनी मुश्किल है ये बात समझना, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। जीनत नहीं जाहिर करनी, मगर जो खुद जाहिर हो जाए, अब खुद जाहिर हो जाए ये तो नहीं कोई छुपा सकता, भाई जितना भी अबाया पहन ले, जितने भी चादरें ओढ़ ले, ये तो नहीं छुपाया जा सकता ये पतली है कि मोटी है, मगर एक एक उस तो ना पता चले ना। तो ये जिनके सामने जाहिर हो सकती है उनके भी नाम बता दिए गए। अब यहां पे ये नहीं कहा गया कि आपने बस किसी इसके अलावा किसी मर्द के साथ ना बात करनी है, बायकॉट कर देना। आवाज भी मैंने कहा इल्ला मा दहरा मिन्हा में आ गई, यानी आवाज भी जो है ये ऐसी चीज है जो खुद ब खुद जाहिर हो जाने वाली है, कोई बोलेगा तो आवाज आ जाएगी। बाज लोग कहते नहीं आवाज का भी पर्दा है, आवाज का पर्दा कैसे है, खुद सोचे अजवाज मुतहरात का कहीं पे भी नहीं मिलता कि उनकी आज तक आवाज ही नहीं जी किसी ने सुनी थी, ऐसा तो कहीं पे भी नहीं मिलता। आवाज तो इंसान छुपा ही नहीं सकता ना। हाँ ये नहीं है कि कोई औरत गाने गा रही है, कोई औरत आवाज को लोचदार बना के और ऐसे नाजो अंदाज से बातें कर रही है, वो मना है, फरमाया है अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन से कि लोचदार आवाज में बात ना करें, यानी ऐसी बना बना के इस तरह करके नखरे वाली वो करके नाजो अंदाज वाली आवाजें निकाल के और फिर दूसरों से बात करना वो नहीं करनी, स्ट्रेट बात करो, सही बात करो। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो किस्म के लोग ऐसे हैं जो जहन्नुम में जाने वाले हैं जिनको मैंने देखा नहीं है, उनमें से एक जो है ना, फरमाया ये बहुत ही स्केरी हदीस है, फरमाया वो औरतें जो लिबास पहन के भी नंगी रहती हैं। वो कौन सी औरतें होती हैं जो लिबास पहन के भी नंगी रहे, जिन्होंने सी थ्रू लिबास पहना है, ये इतना टाइट आजकल जीन्स और ये इतनी टाइट होती हैं कि अल्लाह की कसम है मैं खाके कहती हूँ कि नहीं, औरत हो के भी इंसान की शर्म से नजरें झुक जाती हैं कि अल्लाह ये तो ऐसे ही है जैसे नंगी है, यकीन करें बिल्कुल नंगी, या तो इसको पहना के सी है कि इतनी टाइट तो वैसे पहनी नहीं जा सकती, पता नहीं कैसे पहनती, वो कैसे उन्होंने पहनी कैसे की, वो लिबास पहन के भी नंगी है। ठीक है, या स्काफ इतना बारीक है कि उससे भी बाल नजर आ रहे हैं, तो लिबास पहन के भी नंगी हुई ना, लिबास सिर्फ ये नहीं है, ये सारी कवरिंग लिबास है। मायल होने वालियां और मायल करने वाली, मायल होने वालियां क्या, कि वो लड़कों के पीछे जाती हैं, उनको भी लड़कों की तरफ अट्रैक्शन है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, फलां हीरो फलां ये फलां बहुत ऐसा है और फलां ऐसा है, और मायल करने वालियां यानी अपने स्टाइल से, अपने नाजो अंदाज से, अपने फैशनों से, अपने जीनत से मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं। उनके सार बख्ती ऊंटों की कुहान की तरह है, सरों पे भी ऐसे जूड़े बना लेना, ऐसे इतना ऊंचा कर लेना कि स्कार्फ ऊपर टका लेना। फरमाया ऐसे मैंने देखी नहीं है ये औरतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं पाएंगी, खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जन्नत की खुशबू पता है कितनी दूर से आती है, 500 साल से आती है, इतने डिस्टेंस दूर तक भी नहीं होंगी। जाना तो जन्नत में दूर की बात है, जो खुशबू भी ना पा सके, मुझे बताएं कि फिर इसका मतलब जन्नत अगर ना मिली तो फिर क्या है वहां पे, और दूसरी जगह कौन सी है, जहन्नुम है। और एक ही जगह, दो जगह है ना वहां पे, तो ये थोड़ी है कि कोई और भी तीसरी जगह नहीं, फिर सिवाय जहन्नुम के तो और कोई ठिकाना नहीं, तो जन्नत की खुशबू भी नहीं उनको आएगी। और ये देख लें कि आज तो जिसको शरई तौर पे हिजाब कहा जाता है वो तो दूर की बात है, सत्तर भी नहीं ढके हुए, टखने नंगे हो रहे हैं, कहीं बाजू नंगे हो रहे हैं, कहीं गले नंगे हो रहे हैं, सीने के ऊपर आगे नहीं कुछ लिया हुआ, कहां कहां पे केयरलेसनेस हो रही है। और जो कहते हैं ना कि हाय इतनी गर्मी है, तुमने ये कैसे स्कार्फ और अभाई पहने में, वो ये सोच लें अगर दुनिया की जरा सी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती वहां कैसे बर्दाश्त होगी। अगर आप स्लीवलेस पहने हुए इसलिए कि गर्मी बहुत लगती है, हाँ, तो फिर सोचें कि वहां की गर्मी का सोचा है वो कैसी है। और ये कोई छोटी सी मामूली बात नहीं है कि चलो चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अगर हमने नहीं भी किया तो क्या क्या हो गया, सारी दुनिया ही नहीं करती और हमने भी नहीं कर लिया तो क्या हो गया। देखें हर एक को अपना हिसाब खुद देना है, हर एक को अल्लाह के आगे खुद खड़े होना है। और शैतान जो है इसी चीज को चाहता है कि औरत पर्दे से निकले, क्योंकि उसने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम इनका पर्दा ही तो उतरवाया था, वो आहिस्ता आहिस्ता उतरवाता है, वो कोई पागल नहीं है कि भाई एक दिन कहते सारे कपड़े उतार दो, ऐसे नहीं करेगा, पहले हिजाब उतरवाएगा, फिर पहले नकाब उतरवाएगा, फिर बाया उतरवाएगा, फिर हिजाब उतरवाएगा, फिर स्लीव छोटी कराएगा, फिर हर चीज को फिर आसान होती चली जाती है। तो शैतान ने तो ये ठान रखा, हम देख लें कि हम क्या शैतान के रास्ते पर चलना चाहते हैं या वो दूसरा रास्ता जो अल्लाह ने हुक्म दिया इस पे चलना चाहते, कुरान पे चलना चाहते। एक तरफ जन्नत है और दूसरी तरफ लोगों की तारीफें हैं, या लोगों में इन होना है, या मेरी फ्रेंड्स में मैं कैसे इन होंगी, या पता नहीं और क्या क्या रीजंस हैं, ऐसा क्यों नहीं करते आप। जाहिर है हमने अगर हक पे रहना है तो तब भी जान के रहना है कि हक क्या है, और अगर उसी पे चलते रहना जिस पे हम हैं तो फिर भी इल्म जरूर ले लें, पता जरूर होना चाहिए कि कर क्या रही हूं। देखें एक तरफ लिखें जन्नत और दूसरी तरफ लिखें वो सारे रीजंस जिसकी वजह से हम अल्लाह के इस हुक्म को छोड़ रहे हैं, वो लिख लें, जन्नत एक तरफ और ये रीजन एक तरफ। आप मुझे बताएं इनमें से एक चीज मिल सकती है, किसको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं, किसको छोड़ना अफोर्ड कर सकते हैं। हम सोचते हैं ना हमने बस कपड़े पहन लिए यही ये तो काफी है ना, ये बस काफी है। गर्मियों में जो कपड़े पहने होते हैं औरतों ने, लॉन पहनी होती है इतनी बारीक जिसको आप बाप और बेटों के सामने भी नहीं पहनना चाहिए, जिससे अंडर गारमेंट्स नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे कुछ औरतें ऐसे कलरफुल अंडर गारमेंट्स पहन लेती हैं कि जो यानी दूर जा रही है ना तो तब भी सब नजर आ रहा है। अल्लाहु अकबर। मैंने आपको बताया ना कि ये हम औरतों का इम्तिहान है। और यहाँ पे एक बात और, खिमार को वो स्कार्फ ना समझे जो हम छोटा सा ले लेते हैं और हम सोच लेते हैं कि ये स्कार्फ मैंने पहन लिया, ये मेरा खिमार हो गया, ठीक है। खिमार बड़ी बड़ी उसको कहते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा वो होता है जो आपके जिस्म को ढांपता है, ठीक है ना। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तो अंसार की औरतों के बारे में फरमाया था कि सुबह को वो ऐसे जा रही थी जैसे इनके सरों पे कव्वे बैठे हैं, यानी ब्लैक सारों ने पहने हुए थे और जा रही थी। अब देखते हैं कि अंसार की औरतें जो अनामता अलैहिम में हैं, जिनपे अल्लाह ने इनाम किया हुआ, उनके रास्ते पर हम चलते हैं या किसी और के? उन्होंने तो फौरन कर लिया था, फौरन। अब हमारे जेन में देखें, ये आयतें कोई इतनी मुश्किल नहीं है समझनी, और ये है कि शैतान इतनी चीजें सुझाता है ना कि अच्छा फिर क्या होगा, फिर तुम जिम कैसे जाओगी? देखो जिम जाना भी तो बड़ा जरूरी है ना सेहत के लिए, तो ठीक है जिम जाना है आपने, तो आप ऐसा करें कि ऐसा गाउन सिलवाएं, ऐसा बाया सिलवाएं, थोड़ा सा जरा ऊंचा हो जाए, चलो एंकल से थोड़ा सा ऊंचा सिलवा लें। मगर ये तो मतलब नहीं है कि जिम जाने के लिए सारी हदें ही पार कर दें और उसके लिए टाइट कपड़े पहन के चल पड़े। बाज़ कहते हैं कि हस्बैंड है ना वो नहीं मानते, चले हम हस्बैंड की, वैसे माशाल्लाह इतनी हम सब फर्मा बरदार बीवियां कि हस्बैंड की कोई बात आज तक हमने टाली ही नहीं है, तो ये तो फिर जाहिर है ये भी माननी है। तो फिर सोच लें कि ये कब्र में हस्बैंड साथ जाएंगे हमारे, और हशर के दिन जब सवाल जवाब होगा, और इस आयत का सवाल हो गया हमसे, तो जवाब मैं दूंगी या मेरे शौहर? ये सवाल है। अगर तो शौहर ने देना तो ठीक है, वो देते नहीं, मैं तो मासूम सी एक तरफ बैठ जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे अपना जवाब खुद देना है तो फिर क्या अल्लाह के हुक्म के ऐसे भी बड़ा शौहर का हुक्म है? अब तो हम अरबी भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी समझते हैं कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है कि अल्लाह ताला का क्या हुक्म है, क्या इससे भी बड़ा है शौहर का हुक्म? और यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो फिर बताएं कि भाई कंफ्यूजन क्या है यहाँ पे, जो समझ से बाहर बात है। देखें, और एक मैं आपको समझाने के लिए ये बात कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आई नो के होंगे। तीन तरह के लिबास होते हैं, ये लिख लें बात। एक है जिस्म को ढांपने वाला लिबास, जैसे हमने ये शलवार कमीज पहनी हुई है। नंबर टू खिमार, जिसका यहाँ पे जिक्र है, जो घर के अंदर का लिबास है। और नंबर थ्री जिलबाब, जिसका सूरह अहज़ाब में जिक्र है, जो बाहर पहन के जाएंगे। अब क्या होता है, ऐसे बाज रिश्तेदार होते हैं जो, जैसे हम कहते हैं ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ये भी एक सवाल आया था, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अब क्या करें उसमें, गैर महरम भी हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते कहीं और जाके घर लेना, अब क्या करें, देवर जेठ नंदोई सब आते जाते हैं, या चलो साथ नहीं भी रहते तो आते जाते, हर वक्त आना जाना है घर में, तो अब उनके सामने क्या करें हम? क्या जिलबाब लेके बैठ जाए, अबाया स्काफ लेके बैठ जाए, नकाब करके बैठ जाए? तो एक बात समझ लें, उनके सामने भी जीनत तो नहीं खुलेगी, जीनत का इजहार नहीं होगा, मगर उनके सामने ठीक है, बाहर जैसा आप जिलबाब भी नहीं लेके बैठ सकते। बाज़ औरतें ना जब ये आयात पढ़ती हैं और इन पे अमल करना शुरू करती हैं, तो वो कहती हैं अच्छा हमें तो कुरान में ये है कि इनके सामने नहीं आना, अब हम तो अपने कमरे में बैठे, मैं खुद ही पकाओ, खुद ही खाओ, खुद ही सारा करो, मैं तो पर्दा करती हूँ। ये नहीं कोई पर्दा है, किसने आपको कहा आप कमरों में घुस के बैठ जाएं और दरवाजे बंद कर लें जी, कोई आ गया नीचे आप जो है जो वो अब उनको कैसे, उनके लिए कुछ करना है, किचन में जाना है, या वो एक दिन दो दिन तीन दिन रहेंगे तो आप कमरे में ही बंद रहेंगे? नहीं, फिर क्या है, फिर ये है कि बाहर भी आएंगे मगर घर में खिमार आप लिए रखेंगे, मेकअप ना करें आप उस वक्त, अगर किया है तो छुपा लें, ठीक है, लेकिन लिबास को तो जाहिर है छुपाएंगे, तो आपका खिमार फिर इतना हो कि बस आपका थोड़ा बहुत जो लिबास है वो इतना छुप जाए कि उसकी जीनत कोई भी जाहिर ना हो, और ना ही ऐसे गैर महरम रिश्तेदार हैं चाहे उनके साथ कोई अकेले में बैठे नहीं, एक कमरे में होके अकेले होके बातें कर रहे हैं, जी अब हस्बैंड तो घर पे नहीं है, चलो देवर को एंटरटेन तो करना है, तो मैं ही उनके साथ बैठ के बातें करूंगी, ये नहीं करना। और वैसे खाना भी बनाएंगे, सर्व भी करेंगे, सब रखेंगे, उठाएंगे, करेंगे, सभी करना होगा। अगर आपके ससुराल में ऐसा रिवाज है कि सामने आमने बैठ के टेबल के ऊपर खाना खाया जाता है, अब मियाँ भी कह रहे हैं आप आके खाना खाओ, अब आप अकेला अपना खाना लेके कमरे में घुस के तो नहीं बैठ सकते, उस वक्त क्या करेंगे, बैठेंगे भी मगर आमने सामने ना बैठे, फिर साइड पे होकर बैठ जाए। देखें हर चीज वर्कआउट कर सकती है, हमने इस तरह बना लिया, फिर इसका क्या होगा, फिर उसका क्या होगा, फिर इतने दिमाग में सिनेरियोज आ जाते हैं, फिर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कैसे खाएंगे, फिर हम फलानी जगह जाएंगे तो क्या करेंगे, फिर अगर हमारे घर वो आ गया तो फिर क्या होगा। तो आप ठीक है बड़ा अपना दुपट्टा ले लें और उसके बाद आप अपना सारा काम करें, और अबाए की जरूरत नहीं है। दुपट्टा दुपट्टे से मतलब है कि वो खिमार ऐसा हो जो फिर ओढ़नी ऐसी हो। अब दुपट्टे से कोई ये ना समझे चुनट वाले छोटे छोटे दुपट्टे लेके तो हम घूमने शुरू हो जाए, ना ऐसा हो जिससे कोई भी चीज फिर मेरी नजर ना आ रही हो, लिबास का कुछ हिस्सा तो ढक जाए, बाकी जेवर वगैरह ढक जाए। अब उसके बाद फिर सारा काम आप करेंगे। अब कई दफा घर में ऐसे मेहमान आ जाते हैं जो रिश्तेदार मेहमान, और महीनों महीना उन्होंने रहना, तो उस वक्त क्या करेंगे फिर आप, वो आपके महरम भी नहीं है, ना महरम है मगर रिश्तेदार है। अब नंद के बच्चे हो सकते हैं और कजन हस्बैंड के हो सकते हैं, अपने कोई कजन हो सकते हैं, ये सारे रिश्ते ही है ना। तो अब उसमें ये नहीं अब हंसी खेल बोलने बैठ जाएं और उनके साथ बच्चे नहीं, ये भी हमारे रिश्तेदार हैं और हम इनके रिश्तेदारी निभा रहे हैं और सिला रहमी है, ये खाला ज्यादा है, ये मामू ज्यादा है, ये पुप्पी ज्यादा है, नहीं उसमें भी ना सर से दुपट्टा उतरेगा, ना जेवर नुमाया होगा जाहिर होगा, ना कपड़ों का सारा या जिस्म की कोई शेप नजर आ रही है या कुछ है वो चीज नहीं होगी, मगर काम भी सारे करेंगे। हाँ ये अलग बात है अगर शौहर के दोस्त आ गए वो अलग बैठ सकते हैं, आप अलग बैठ जाएं, काम फिर भी आप करेंगे। मगर बाज दफा ऐसे होता है ना कि जब आपके ससुराल होते हैं, अब वो रिश्तेदार भी हैं, अब एक जगह सारी फैमिली बैठी हुई है और आप छुपी बैठी हुई है कहीं किचन में या कहीं और छुप के बैठी हुई है, अब हस्बैंड को गुस्सा ही आएगा कि ये क्या मुश्किल पड़ गई है। तो आप भी वहां पे बैठ जाएं, औरतों में बैठ जाएं और आप भी बातें करें और वो भी सारे बात, यानी ऐसा ना करें कि अपने आप को सेक्लूड कर लें, सेक्लूड करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मगर ये है कि सबके सामने एक तरह से नहीं जाना, ठीक है। अगर सबके सामने एक तरह से ही जाना होता, देवर जेठ के सामने भी वैसे ही जाना है जैसे अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने हस्बैंड के सामने जाना है, तो फिर इस हुक्म की क्या जरूरत है, फिर व्हाट डज इट मीन ये जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है। बाज कहते हैं पर्दे का कहीं हुक्म ही नहीं है कुरान में, तो ये पर्दे का हुक्म नहीं है तो ये क्या है, इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं छुपाना, ना सर के बाल छुपाने हैं, सर के बालों का तो कोई जिक्र ही नहीं, और ना ही मेकअप छुपाना है, ना ही जेवर छुपाना है, ना ही कपड़े छुपाना है, तो फिर छुपाना क्या है। बाज कहते हैं हिजाब फर्ज है, देखो 5 पिलर और इस्लाम में तो है नहीं, तो भाई देख लें कि यहाँ पे जो कुरान में हुक्म दिया गया, हुक्म जो होता है अल्लाह का वो फर्ज होता है करना या फिर वो ऑप्शनल होता है कि हमारा जी चाहेगा तो हम करेंगे, अगर नहीं जी चाहेगा तो अल्लाह तब चाहे तेरा हुक्म हो हम नहीं करेंगे, नौजुबिल्ला के हम ये कहना चाहते हैं, वो मेरा जी जो नहीं चाहता, तो फिर तो आप अपने जी के ही गुलाम हैं। फिर खुदा तो अपने जी को ही बनाया ना, अल्लाह को खुदा तो नहीं बनाया। अब वो भी ऐसा करती है, वो भी तो करती है, दुनिया जो भी करती रहे, कुरान पढ़ने वालियां जो है ना वो तो कम से कम इस पे अमल करें। और अगर कुरान पढ़ के भी वही हाल हुलिए और वही चीजें चलती रहे तो फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, जब फिर वही काम हो जो अल्लाह की नाफरमानी की है, तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। हमने तो अपनी चाहत की खातिर फिर अल्लाह के हुक्म को कुर्बान कर दिया, अपनी खुशी की खातिर अल्लाह ताला के हुक्म को तोड़ दिया, उसकी बात को पीछे कर दिया, अपनी बात आगे कर दी, तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह ताला हमसे इस पे खुश होगा। नहीं नहीं जी अल्लाह ताला माफ कर देगा, नहीं भाई अल्लाह ताला माफ करेगा जिस वक्त कि आप तौबा करेंगे। अगर इन हुक्मों की कोई जरूरत नहीं थी और ये ऐसे ही थे और इन पे माफी मिल जानी थी, तो फिर इनकी जरूरत यहां पे रखने की कुरान में क्या है, आप देखें, औरत जो है ना, अल्लाह ताला ने इतनी कीमती चीज बनाई है कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का जरिया बनाया है कि औरत की हिफाजत है इसमें, जो कि ये अपने आप को इस तरह नुमाया ना करे, इस तरह अपनी जीनत का इजहार ना करे, इसमें उसी के लिए फायदा है। और अल्लाह ताला जब ये हुक्म दे रहा है ना, तो अल्लाह बता रहा है कि औरत तू बड़ी कीमती मखलूक है, तू कोई शो पीस नहीं है जिसकी तरफ आदमी देखें, अपनी निगाहों को इंजॉय करें। जैसे वो बाज जगह पे देखा गया कि मर्द ये बात कर रहे होते हैं कि औरतें होती हैं तो मजा आ जाता है उस मजलिस में, और औरतें होती हैं तो फिर कोई रौनक होती है। मर्दों का क्या सिर्फ, आप देखें ना, ये जो ऐसे मर्द होते हैं जो जिन्होंने अपनी आंखों से की लज्जत इससे लेनी होती है कि औरतें हों और उनके कह कहे हों और उनकी जुल्फें हों तो फिर मजा आता है। तो आप ये देखें कि ये कुरान और इस्लाम और इसकी हदूद से बाहर है, ये कोई बैकवर्डनेस नहीं है। अल्लाह ताला नहीं चाहते किसी की हविस सदा नजरें आप पे पड़े। अच्छा, एक एग्जांपल सोचें, आपने अगर इतना बहुत अपना कोई कीमती ब्रेसलेट है उसको अपनी साइड टेबल पे रखा हुआ, और आप देखते हैं कि आपकी मेड कमरे में आई है, जब वो कमरे में आई है तो उसने आपके ब्रेसलेट की तरफ देखा। अब अगर आप उसकी नजरों को पा लेती हैं, आपको पता चल जाता है इसने देखा है मेरे ब्रेसलेट की तरफ, उसके बाद क्या करती हैं? सबसे पहला काम यह होता है कि इस ब्रेसलेट को उठा के कहीं छुपा दूं, ये ना हो कि ये कहीं गायब ही हो जाए, इसने देखा था इसकी तरफ। देखा था उसने, उठाया थोड़ी, लेकिन आपका काम पहला क्या है, उसको छुपा देना। कितनी अजीब बात है, किसी सोने चांदी की चीज से भी ज्यादा कीमती चीज एक औरत की इज्जत है। और वो अपने इस जिस्म पे, अपने इस वजूद पे गैरों की नजरों को महसूस करती है, इसके बावजूद इसको नहीं छुपाती। वो तो एक सोने चांदी की चीज है, उसको आप छुपा रहे हो कि इसने देख लिया इसकी तरफ तो अब कोई कुछ खतरा है। और इस जिस्म क्या ये इतनी भी वर्थ नहीं रखता जितना सोना चांदी है? मगर रब की रहमत पर जरा गौर करें, जिस वजूद की कीमत का, इसकी वर्थ का इस औरत को भी नहीं एहसास है ना, जिसका ये जिस्म है, इसके खालिक को एहसास है और इतना मेहरबान है, उसने अपनी कीमती बंदी को छुपा देना चाहा है। ये कोई ऐसे ना देखे। और जब औरत बन संवर के निकलती है तो उसको नहीं पता कि कितनी नजरें हैं जो उसको देख रही हैं। अगर 100 नजरें उसकी तरफ उठती हैं तो वो उन 100 नजरों का क्या जवाब देगी, और वो 100 नजरें क्या लेके वापस लौटती हैं, उसको क्या पता क्या क्या ख्यालात उनके दिल में पैदा होते हैं। सोचें अगर आपकी बेटी बेध्यानी में, लाइल्मी में, भोलपन में कोई कीमती तरीन अपना मसलन रिंग ही रख देती है कहीं, आप जब देखती हैं बच्ची यहां पे रख के गई भी है, वो स्कूल चली गई है, इसको पता ही नहीं है, इसको इसकी वर्थ ही नहीं पता, इसको एहसास ही नहीं है, आप फौरन उठा के संभाल के रख देती हैं, क्योंकि आप मां है ना, तो आपको पता है, आप उठा के संभाल के रख लेती हैं। तो अल्लाह जिसने ये हुक्म दिया वो तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, पैदा करने वाली मां से ज्यादा वो मोहब्बत करता है आपसे, इसलिए वो चाहता है कि आप सेफ रहें। आपको अपनी सेफ्टी का एहसास नहीं है, भोलपन में, लाइल्मी में, बेध्यानी में आपको नहीं है अपना ध्यान रहता, लेकिन अल्लाह ताला को ध्यान है आपका। जीनत को खोलना ऐसे ही है जैसे आप मजेदार डिश को सजा के संवार के किसी भूखे के सामने रखते, तो उसकी राल टपकेगी ना। औरत हर सेल्फी मर्द के लिए अट्रैक्टिव है, लेकिन जब वो अपने आप को और अट्रैक्टिव बना लेती है जीनत करके, तो फिर तो जाहिरी बात है वो इस चीज की दावत दे रही है कि देखो मुझे, देखो, देखते क्यों नहीं। चाहे उसके दिल में ये बात नहीं है, मगर उसका ये करना ही इस चीज का मैसेज है कि अब मेरी तरफ देखो, क्योंकि अब मैं खूबसूरत लग रही हूं। आपको क्या लगता है, क्या ये औरत के साथ कोई जुल्म है या बेजा पाबंदी है जो अल्लाह ताला ने यहां पर लगाई? नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है, उसकी केयर है, वो केयर करता है, तभी तो चाहता है कि आप प्रोटेक्टेड रहें। हम सोचते हैं ना, फिर मैं अपने हस्बैंड की नजरों से उतनी उसकी नजरों में फेवरेट नहीं रहूंगी, वो फिर मेरा मेरी तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं होगा, मैं कैसे खूबसूरत लगूं अपने हस्बैंड की। लेकिन अगर देखा जाए तो हस्बैंड से ज्यादा हम दूसरों की नजरों के अंदर खुद को खूबसूरत करते हैं। हस्बैंड बेचारा तो बीवी की खूबसूरती देख ही नहीं पाता, उसने तो पहले दिन दुल्हन बनी भी देखा था और उसके बाद एक दो महीने जो बड़े सजाए संवारे अपने आप को, उसके बाद तो बेचारा तरसता ही रहता है किसी वक्त देख लूं इसको कि ये भी सजी बनी हो। ये तो हमारा बहाना है ना, नहीं हस्बैंड की नजरों में मैं अच्छी लगना चाहती हूँ। अगर आप हस्बैंड की नजरों में जचना चाहती हैं, खूबसूरत लगना चाहती हैं, मैं आपको एक नुस्खा बताऊं, फ्री का नुस्खा है, कोई चार्ज नहीं है इसके, कोई पैसे नहीं है, नुस्खा नहीं आपको कोई बताएगा। आजकल लोग अपनी कोई भी जो जिस जो बड़ी फायदे की चीज होती है ना, फ्री किसी को नहीं कोई बताता, लेकिन मैं आपको फ्री बता रही हूं, सब इसको आजमा के देख सकते हैं। वो नुस्खा ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह मेरे शौहर की नजरों में मुझे अट्रैक्टिव बना दे, खूबसूरत बना दे, मेरे शौहर के दिल को मेरी तरफ मायल कर दे। यकीन करें ये बहुत कारामद नुस्खा है। बहुत सारे लोग अल्लाह ताला के अहकामात को इसी वजह से पीछे फेंकते हैं, फिर शौहर मुझे ऐसे देखेगा तो कहेगा तुम ऐसी अम्मा लग रही हो, तुम ये लग रही हो, तुम वो लग रही हो। शौहर के लिए घरों में बने संवरें, खुशबुएं लगाएं, जो भी करें, लेकिन कहें कि मैं बाहर नहीं बन संवर सकती लोगों के लिए, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको खूबसूरत बना दे। ये दिल जो है ना, अल्लाह की दो करीम उंगलियों के दरमियान है, जिधर चाहे उसको फेर दे। यकीन करें अगर ये बेपर्द होके फिरना ही शौहरों की नजरों में जचने के लिए जरूरी होता तो आज ये जो इतनी सेलिब्रिटीज, जो क्या नाम है इनकी, फिल्मी हीरोइने हैं, मॉडल्स हैं, वो तो मेरे और आपसे बहुत ज्यादा सज्जी संवरती हैं, उनके तो शौहर तो उनके कदमों में बैठे रहते, लेकिन आप देखते हैं उनकी जिंदगियां सबसे ज्यादा अजीरन होती हैं, बेसकून होती हैं, घरों के सकून नहीं उनको होते, उनके हस्बैंड सबसे ज्यादा बेवफा निकलते हैं, औरों के पीछे भाग रहे होते हैं, वो तरस रही होती है वफादार शौहर के लिए। अगर इन्हीं चीजों से बनती होती ना जिंदगियां, तो फिर तो बहुत डिफरेंट आप केस देखते दुनिया में। लेकिन ये मोहब्बत डालनी अल्लाह का काम है, मेरा आपका नहीं है। अल्लाह अकबर। बस लोग ये समझते हैं कि हाँ औरत बेढंगी नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी, नहीं तो आप ढंग के साथ अपना स्काफ भी लें, आप ढंग के साथ अपना पर्दा करें। जरूरी ये नहीं होता, ये जो हम समझते हैं कि गंदे मंदे रहना ये हिजाब है, ये पर्दा है, बेढंगे रहना ये हिजाब पर्दा है, और जब बदबू आ रही हो, पसीने की स्मेल आ रही हो, ये हिजाब पर्दा है, ये नहीं है बात, ठीक है। अच्छा, फिर आगे फरमाया इसी आयत में कि अब एक और हुक्म है, वला यदरिबना बि अर्जुलिहिन्ना लियालमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ना मारे अपने पाओं को कि जान ले जो वो छुपाती हैं अपनी जीनत में से, यानी पैर मार मार के जमीन पे ना चलें कि वो जो छुपी हुई जीनत है वो जाहिर हो जाए। छुपी हुई जीनत में क्या है यहाँ पे, मसलन पाजेब कोई पहनी हुई है पैर में तो छन छन करने लगेगी, छुपे हुए कोई जेवरात हैं तो वो उनमें जाहिर आप ऐसे मार मार के चलेंगे तो कोई चूड़ियां हैं, कोई पाजेबे हैं, कोई और हैं, उनकी आवाज निकलेगी, या चाल नुमाया होंगी ऐसे, यानी नाजो अंदाज के साथ ऐसे चलना, ऐसे पैर मार मार के कैटवॉक करना, उससे चाल नुमाया होंगी। तो ये छुपी हुई जीनतें हैं, ये नहीं पहुंचनी चाहिए मर्द तक। क्या इसी तरह पैर मारने में ये भी है कि ऐसी हील्स पहन लेना कि जब आप हॉल में दाखिल हो तो वहां से टक टक शुरू हो और वहां से आदमी देखना शुरू करें और जब तक निकले नहीं उस हॉल से तो थ्रू आउट टक 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 जा रही है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी अपने जीनत का इजहार है। ये हरकत भी मर्दों के दिलों में औरत की तरफ मिलान पैदा करती है, उनकी तवज्जो होती है, वो इधर उधर बातें भी कर रहे होंगे तो जूं ही ऐसी आवाज आएगी, कोई पैर मार मार के चल रहा है, टक टक करती जा रही है, मुझे बताएं कि उसकी तवज्जो होगी या नहीं, सब मुड़ के देखेंगे। अब यहां पे ये नहीं आपको कहा गया आप घरों में बंद हो जाएं, कोई किसी से बात ना करे, कोई किसी के साथ बायकॉट है, मर्दों का भी बायकॉट हो गया। और नहीं, जरूरत के तहत किसी से बात भी की जा सकती है, जरूरत के तहत किसी कोई काम के लिए बाहर भी जाया जा सकता है, मगर कैसे जाना है ये भी बता दिया गया। और जरूरत के तहत कैसे बात करनी है, कोई लोचदार लहजा ना हो, कोई ऐसी तरीके की बात ना हो। और इसके अंदर फिर ये भी इस चीज को समझना चाहिए कि बाज लोग ये समझते हैं कि ये तो इमाम मस्जिद हैं, ये शेख हैं, ये फलाने स्कॉलर हैं, अब इनसे तो जितनी मर्जी हंस हंस के बातें करें क्योंकि ये तो बड़े नेक हैं। आजकल कई यंग स्कॉलर्स हैं जिनके पीछे लड़कियां ऐसी दीवानी हो रही होती हैं जैसे कि पता नहीं कोई फिल्मी हीरो के साथ वो बातें कर रही हैं, यहाँ जैसे कि पता ऐसे फरेफ्ता सी हो रही होती हैं कि बस ये जायज है क्योंकि ये तो मतलब जाहिर है स्कॉलर है, इतना बड़ा स्कॉलर है ये तो। देखें, उनसे इल्म जरूर लें, सीखें जरूर, मगर ये माना नहीं है कि नजरों ही नजरों में किसी और तरह से उनको चाहने लगे, एज ए हस्बैंड उनको देखने लगे, एज ए मतलब ख्वाबों का शहजादा उनको देखने लगे, इसलिए कि हम इस्लामी हैं तो इसलिए हम स्कॉलरों को इस तरह देखते हैं, जो दूसरे होते हैं वो हीरो फिल्मी हीरो को देखते हैं तो हम इनको देखते हैं, तो अब ये जायज हो गया और ये दीनदारी है। और कहते क्या, ये तो नेक है ना, ये तो इमाम है ना, ये तो फलान है ना, तो उनके साथ हंसी खेल करना जायज नहीं बन जाता? किस इमाम मस्जिद का यहाँ पे इस लिस्ट में जिक्र आ रहा है ये बताएं, किस स्कॉलर का जिक्र आ रहा है? मर्द औरत कभी इसी तरह अकेले ना बैठे, वरना तीसरा शैतान होगा। अगर किसी के पास ऐसे बात करने के लिए जाना भी हो, अपने साथ किसी को ले जाएं, अपने हस्बैंड को ले जाएं, नहीं तो किसी और औरत को साथ ले जाएं। घर पे कोई आ भी जाए तो उसके साथ अकेले में ना बैठे। अल्लाह अकबर, इतनी सारी बारीक बातें इसमें। अच्छा, इसके अंदर एक दामाद का नाम नहीं आया, तो दामाद भी अब्दी महरम है, हमेशा का महरम है, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं है, लेकिन और जगहों के ऊपर हमें पता चलता है कि जो सास है वो सूरह निसा की जो चौथे पारे की आखिरी आयत है उसमें बता दिया गया कि मर्दों के लिए कौन कौन सी औरतें हराम है, यानी ये उनकी महरम है, तो उनके अंदर आ गया कि सास भी महरम है, सास के साथ भी कभी निकाह नहीं हो सकता दामाद का, तो इसलिए उसको भी यहां पे अगर औरत के लिहाज से देखा जाए तो उसका फिर दामाद उसके लिए महरम हो गया। मगर दामाद का बाप, बहू का बाप, ये महरम नहीं हो जाते, ठीक है, किसी औरत के लिए। इस तरह बहनोई के बारे में, ठीक है, ये लोग ऐसे तो नहीं होगा उनके साथ पर्दा जैसे कि आप बाहर जाते हुए करेंगे, मगर उनके सामने भी इस तरह से जीनत का इजहार नहीं हो जाएगा कि फुल मेकअप करके और इस तरह करके उनके सामने बैठ जाए, ठीक है। वो तो सिर्फ यही रिश्ते हैं जिनका यहाँ पे जिक्र किया गया, एक टाइम तक के लिए, वो जब तक आपकी बहन उसके निकाह में होती है तो उसके साथ निकाह नहीं हो सकता, मगर ये नहीं है कि फिर वो ना दुपट्टा लिया हुआ, ना उसका होश है, ना कुछ है, और फिर उनके सामने घूम रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये अहकामात पढ़ने के बाद क्या लगता है कि हमारे यहाँ कितना इनके ऊपर अमल हो रहा है? अगर हम अपनी शादी ब्याह देखें, अगर हम अपनी दावतें देखें, अगर हम अपने घरों का कल्चर देखें, क्या ये इस एक आयत के ऊपर अमल हो रहा है? कितने हम हदों से निकले हुए, पर्दा तो दूर दूर कहीं, वो तो दूर की बात है, इतना भी नहीं है कि हमारे सतर ही कवर हो जाए। उसके बाद फिर हम अगर शिकायत करें कि नहीं ये आदमी क्यों ऐसे देखते हैं, वो क्यों घूरते हैं, वो क्यों ऐसे करते हैं, तो उसके अंदर फिर औरत का भी कसूर हो जाता है कि जिस वक्त वो ऐसे हाल हुलियों के अंदर मर्दों के सामने आए। आप देख ले, मर्दों का हुक्म तो दो लाइनों में खत्म हो गया, दो हुक्म उनको, औरतों के हुक्म कितने सारे हैं, ये ना करो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और हम कितने ही सारे लोगों को कह देते हैं ये तो भाई है ना, हस्बैंड का दोस्त भी भाई है, कजन्स भी भाई है, सभी भाई है, तो सारे भाई हैं, इसलिए इनके सामने जीनत का इजहार हो जाए। लेकिन यहाँ पे किधर लिखा हुआ है? जहाँ पे आबाई बोलती हिन्न है, अपने मामू चचा 20 में आ गए, क्योंकि जब मैंने आपको बताया वहां पे सूरह निसा में चौथे पारे की आखिरी आयत जो है उसके अंदर कह दिया कि भांजी भतीजी तुम्हारी महरम है, तो इसका मतलब है कि चचा और मामू भी ऐसे हैं जिनके सामने जीनत का इजहार हो सकता है। तो असल चीज अगर हम इस चीज को सोच के पढ़ें तो असल चीज यही है कि जीनत नहीं खुलनी चाहिए, चाहे वो पाजेब है, चाहे वो छुपी हुई जीनत है, चाहे वो खुशबू की सूरत में है। खुशबू लगाना औरत को मना नहीं है, खुशबू लगाओ जितनी मर्जी लगाओ, मगर खुशबू गैर महरमों के पास ना जाए, उनको उन तक खुशबू का पहुंचना मना है, ठीक है। बाकी आप घर में लगाएं, जितनी मर्जी लगाएं, हस्बैंड के लिए लगाएं, बेटे हैं घर में, भाई हैं घर में, कोई बात नहीं है, बाप है घर में, खुशबू लगाने में कोई हर्ज नहीं। और एक बात याद रखिएगा, बेटे हैं या भाई जवान हैं, उनके सामने भी ऐसा नहीं हो जाए कि ना दुपट्टों का होश हो, गले डीप पहने में, फिर वही बात है कि सतर तो ना खुले। एक दफा अबू हुरैरा को एक औरत मिली जिसने जिसके जिस्म की खुशबू जो थी ना वो फैल रही थी, उनको उन तक भी पहुंच गई और उसका दामन हवा में उड़ा था। फरमाया, ए जब्बार की बंदी मस्जिद से आ रही है? उसने कहा हाँ। फरमाया, तुमने खुशबू लगाई भी है? कहने लगी हाँ। फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो मेरे महबूब थे, कि जो औरत खुशबू लगाए हुए मस्जिद में दाखिल हो उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो घर जाके उसले जनाबत जैसा गुसल ना कर दे, यानी नमाज ही नहीं कबूल होगी। और हम स्पेशल खुशबू लगा के मस्जिद जाते हैं, क्या मस्जिद जो जा रहे हैं तो खुशबू लगा के जाएंगे? मर्द लगाएगा, औरत नहीं लगाएगी। तो जितनी ये छुपी, ये सारी छुपी हुई जीनते हैं ना, नजर तो नहीं आती, लचक लचक के चलना, ये ठीक है, ये छुपी हुई जीनत है। ये आपने खुद ही ऊपर कुछ चढ़ाई तो नहीं हुई, लेकिन ऐसे चलना ये भी उसी में आ गया, इतरा इतरा के चलना ये भी इसी में आ गया कि जो कुछ छुपी हुई जीनत है। तो ऐसी औरत के बारे में हदीस में आता है, जो औरत, ये बहुत स्केरी हदीस है, जो औरत आरास्ता पैरास्ता होके, यानी बन संवर के, गैर महरमों में, यानी जो गैर मर्द होते हैं उनमें इतरा इतरा के चलती है, कयामत के दिन वो मुजस्म तारीकी में होगी, जहां नूर की किरण तक भी नहीं आती होगी, यानी क़यामत के दिन अंधेरे में होगी वो, बिल्कुल पिच डार्कनेस, मुजस्म अंधेरे मतलब पिच डार्कनेस, एक रोशनी की किरण भी नहीं जहां पे। सोचे अंधेरे में रहना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं, अंधेरे से घबराहट होती है। और कहां ये कि ऐसा अंधेरा, यानी किसी कोई ऐसा कैदखाना होगा या क्या होगा जिसमें इतना अंधेरा होगा कि इतनी स्लाइट सी बीम ऑफ लाइट भी नहीं आएगी। जो औरतें इस तरह बंद समर के निकलती हैं, फिर बताएं कि किधर हम खड़े हैं, फिर बताएं कि ऐसी साड़ियां पहनने का कहां से जवाब मिल जाता है कि औरतें कहती हैं वो साड़ी क्या जिसके अंदर ये ऐसे नजर ना आए पेट और ये ना हो, वो साड़ी क्या फिर, ये जो फुल स्लीव्स हो, ऐसी टाइट जीने जो के लड़कियों को अपने बाप के सामने भी नहीं पहननी चाहिए, बाप के सामने भी, ये माओं की जिम्मेदारियां कि वो चेक करें कि ये बच्चियां ऐसी ऐसी चीज ना पहने बापों के सामने भी। अल्लाह अकबर। तो जीनत करें बेशक, लेकिन ये जीनत बाहर ना निकले, और घरों में भी सिर्फ किन के सामने है वो लिस्ट आप अपने सामने लिख लें। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज जो कि ये सारे सवाल आते रहते हैं इसलिए इनको एड्रेस करना जरूरी है। लोग समझते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, वहां पे तो हम हिजाब करें क्योंकि वहां पे लोग देखते हैं, अमरीका में हिजाब करने की क्या जरूरत है, वेस्ट में हिजाब की क्या, यहाँ पे तो कोई देखता ही नहीं। अल्लाह अकबर। इस आयत में मुझे कहीं दिखा दें कि जमीन के एक खित्ते में तो आप ठीक है हिजाब, जो सतर हिजाब और इसके आप पूरे करें तकाजे, लेकिन अल्लाह का यह हुक्म ऐसी जगहों के लिए नहीं है जहां पे और मर्द देखते नहीं है। ये कहां पे है? पूरे कुरान में, हदीस में, कहीं बताएं। हाँ, जो मैंने आपको बताया आइम्मा कराम का, इसमें जरा सा इख्तलाफ है कि ठीक है आप चेहरे का नकाब ना करो वहां पे, जहां पे चेहरे का नकाब वहां पे लाजमी है। इमाम अबू हनीफा का सिर्फ ये मौकफ है, बाकी तो सारे कहते हैं कि चेहरे का भी पर्दा होना चाहिए, लेकिन इमाम अबू हनीफा सिर्फ इस बात को कहते हैं कि ठीक है चेहरा खोल सकती है औरत, लेकिन जहां पे फितना हो वहां पे उसको चेहरा भी नहीं खोलना चाहिए। सिर्फ उनका इतना सा गुंजाइश, अगर हमने कहीं से अगर हम गुंजाइश निकालते हैं ना, थोड़ा सा भी हमें कहीं से कुछ मिल सकता है कोई अपने लिए बेनिफिट इस चीज के अंदर कि हम इस तरह से जाएं, वो इस सिर्फ चेहरे के पर्दे में इतना सा मिल सकता है, वो भी वो चेहरा जिसमें कोई भी जीनत ना लगी हो। जो मैंने आपको बताया एक जीनत होती है जो कि अल्लाह की तरफ से ही होती है, वो आपके फीचर्स हैं, वो तो नहीं आप छुपा सकते, मगर एक जीनत है जो आपने खुद की हुई है, वो खुद जो की हुई जीनत है उनमें से कोई चीज ना हो, तब ऐसे चेहरे को खोला जा सकता है। ज्यादा आप ये कर सकती हैं कि जब आप मेकअप करें उस वक्त चेहरे को भी कवर कर लें और औरतों में जाके उसको खोलें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम शादियों पे जाने लगे नीचे अबाया पहन लिया ऊपर स्कार्फ पहन लिया और चिमचिमाता हुआ स्कार्फ है, वो तो स्कार्फ ही जीनत है, चमकते हुए स्कार्फ के साथ फुल मेकअप करके हम जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम तो बहुत पर्दा करने वाली खवातीन हैं। फिर ये कहां से निकलेगा बताएं, ये जवाब कहां से आएगा? और ये कि कोई हमें देखता नहीं है, वो देखता है या नहीं देखता, बात देखने की यहां पे कहां की जा रही है कि वो देख रहे हैं तुम्हें तो इसलिए तुम करो, जब देखें तो फिर तुम ऐसे करना, बात है अल्लाह के हुक्म की पॉइंट ब्लैंक, बस वो देखे नहीं देखे, सारे मर्द ऐसे हो जाएं कि वो देखने वाले ही ना हो, बात ये डिस्कस करने की है ही नहीं, बात ये है कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है या नहीं, बस। अगर तो अल्लाह का हुक्म है तो करना ही पड़ेगा। अगर यहां पे जैसे इल्ला मा ज़हरा मिन्हा में एक्सेप्शन आ गई, यहां पे ये भी तो एक्सेप्शन दी जा सकती थी कि जहां पे मर्द नहीं देखते वहां पे तुम बेशक ऐसे ही घुमा करो, वो कहां पे है? कहीं पे भी नहीं है वो एक्सेप्शन। फिर अमरीका हो चाहे अफ्रीका हो, हमने हर जगह पे ही इन आयात पे अमल करना। और जीनत करें मगर कुछ किस्म की जीनतें भी हमारे लिए मना है, और वो कौन सी हैं? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये सही हदीस से साबित है, कि बाल नोचने वाली और नुचवाने वाली दोनों पे अल्लाह की लानत है, और ये टैटूज बनवाने और दांतों में दांतों को घिसवा के नोकीले करना, वो पहले जमाने में होता था, इस तरह की तो चीज नहीं है आज, मगर टैटूज आज भी है कि गुंदवाने वाली हैं और गूंदने वाली हैं, ये जो टैटू बनाते हैं ये, और जो बालों को नोचें ये जो भवों के बाल हैं इनको नोचने वाली हैं और नोचवाने वाली हैं, दोनों के ऊपर लानत की गई। तो इन चीजों को नहीं हम कर सकते। हाँ, और बॉडी से बाल उतार सकते हैं, उसमें नहीं कोई मना किया गया। इसी तरह दूसरी कौन सी जीनत से मना किया गया? बाल जोड़ने वाली और जुड़वाने वाली पे भी अल्लाह की लानत है, यानी बाल जोड़ने, ये जो जुड़ल आर्टिफिशियल बालों का लगाते हैं वो। इसी तरह जो बालों का कलर ब्लैक, जेट ब्लैक है, इससे मना किया गया। और कलर कर सकते हैं बेशक, उसमें कोई मुमानियत नहीं है, मगर जेट ब्लैक कलर को मना किया गया कि जो है वो जेट ब्लैक कलर ना किया जाए। और ऐसा लिबास उससे मना किया गया जो तकब्बुर का लिबास हो, जिसको पहन के इंसान का गर्दन ऐसे हो जाए कि मैं क्या चीज बन गई, उस लिबास से मना किया गया। ये सारी, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो या कुछ बात है तो आप जरूर पूछें ताकि सारी बात क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक बात और बता दूं, ये जो रिश्ते हैं इनमें एक और रिश्ता जो मैंने पता नहीं मेंशन किया, यानी रजात का रिश्ते से जितने रिश्ते नसब से हराम होते हैं ना, जैसे चचा है, मामू है, बाप है, भाई हैं, बेटे हैं, दामाद हैं, उसी तरह रजात से भी हराम हो जाते हैं। जिसका दूध पिया है उसका शौहर बाप है, बाप की तरह ही है, वो भी रजाई बाप है, उस बाप का भाई जो है वो रजाई चचा है, उस माँ का भाई रजाई मामू है, ठीक है। ये उसी तरह फिर ये उससे भी रजात से भी हराम हो जाते हैं। چلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اب سب کو کہا گیا, مردوں کو, عورتوں کو, سب کو, توبوا الى اللہ جميعا, سب کے سب تم توبہ کرو. یعنی جو ان احکامات پہ عمل نہیں کرتا وہ بھی توبہ کرے, جو کرتے ہیں وہ بھی توبہ کریں, کیونکہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان دیکھیں بے دھیانی میں ہی ہو جاتا ہے, کبھی اس حکم میں کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے, کوئی ایسی چیز ہو گئی انٹینشنلی نہیں بھی کی لیکن کہیں کچھ آگے پیچھے ہو گیا, جہاں پہ نظر نہیں ڈالنی چاہیے تھی نظر پڑ گئی, جیسے نہیں باہر نکلنا چاہیے تھا ویسے کسی وقت نکل گئے, کچھ ایسا معاملہ ہو گیا تو پھسل جاتا ہے نا انسان, ہے کہیں نہ کہیں بندہ پھسل ہی جاتا ہے. سب کے سب توبہ کرو. اور توبہ کیسے کی جاتی, آج سارے تسبیحاں پکڑ کے توبہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں, کیا ہوتا ہے یہ توبہ؟ توبہ ہے پلٹ آنا, پلٹ جاؤ, یعنی یہ کام اب چھوڑ دو اور پچھلے کام کے لیے اللہ سے معافی مانگ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں, حالانکہ ان کے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھے. تو پھر کتنی توبہ کرنی چاہیے اس ایک حکم کو ہی لے کے. ایوہ المومنون, سارے مومنوں, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے اگر توبہ نہیں کی تو کیا ہے, نو کامیابی. کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہم؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کرنی پڑے گی ان سارے کاموں سے. ایسے جو جیسے چل رہا ہے چلتا جائے, آیتیں پڑھتے جائیں, ایک کورس پہ ایک کورس ختم کرتے جائیں, کتابیں بھرتے جائیں, اس سے توبہ نہیں ہوتی. کتنا علم لے لیا, کتنی مجھے آیتیں یاد ہو گئی ہیں, کتنے قرآن کو میں نے حفظ کر لیا, یہ نہیں ہے توبہ. یہ کام نہ آئے گی اگر ان آیات پہ عمل نہیں کیا. ہم اپنے سب اپنے آپ کو حساب کریں, کسی کا بھی نہیں ہم نے کرنا, اپنا اپنا کریں. کیا میں نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی شروع کر دی ہے؟ کیا میری نظر کہیں ایسی جگہ پڑ لیتی ہے, پڑ جاتی تو میں فوراً پھیر لیتی ہوں اور دوبارہ نہیں دیکھتی؟ میں نے اپنا خمار صحیح کیا ہے؟ اپنے سینے کی نمائش بند کی ہے؟ آج تک جو کیا ہے اس کے اوپر کیا میں شرمندہ ہوں یا میں فخر سے بتاتی پھرتی ہوں آپ کو, کیا پتا میں تو ایسے ایسے کرتی تھی, میں تو یہ کرتی تھی. برائی ایک چیز ہوتی ہے اور برائی کی تشہیر کرنا, چاہے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہو, اس کی تشہیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. کیا کبھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جب آپ ٹوائلٹ میں ہوں کوئی آپ کو دیکھے؟ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے نا, گندگی سمجھتے ہیں نا اس کو. اسی طرح جب گناہ گندگی لگنے لگتے نا تو انسان پھر خوش ہو کے لوگوں کو مجلسوں میں نہیں بتاتا میں تو ایسے کرتی تھی, میں تو یہ کرتی تھی, میرے جیسا تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ بتانا ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اندر یہ کسک ہے کہ ہائے بڑا مزہ آتا تھا اب کیا میں اس میں آ گئی ہوں. یہ فخر کرنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ تو توبہ کرنے کی بات ہے. یہ تو گندگی تھی جس میں سے نکلی ہوں. تو آیتیں پڑھ کے ان کو سمجھ کے جب اچھی طرح سمجھ آ جائیں تو یہی سوچ لیں کہ یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ نہیں, نہ کسی استاد کو دکھانا ہے آپ کو, کوئی ضرورت نہیں. اگر اللہ سے ہی شرم نہیں ہے تو میرے سے کیا شرم ہوگی؟ میرے سے شرم کرنے کی نہیں کوئی ضرورت. میرے سامنے کریں یا کسی اپنی کلاس والے کے سامنے کریں یا گروپ انچارج کے سامنے کریں, نہیں, کسی کے سامنے بھی نہیں کرنا. یہ معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے اور یہ اس کا حکم ہے, کسی انسان کا نہیں, نہ میرا نہ کسی اور کا. اور دیکھ لیں پھر کہ فرما برداری کیا ہوتی ہے, اس کی مثال انصار کی عورتیں. اس کے بعد دیکھ لیں مجھے کتنا ڈیلے کرنا ہے اس حکم کو ماننے میں.